उमेर साहब, सो वी आर लाइव और देखें पाकिस्तान जीत गया है अपनी ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैंने प्रिडिक्शन ये दी थी कि भाई पाकिस्तान जो है ना शायद हार जाए और न्यूजीलैंड शायद जीत जाए, लेकिन उमेर साहब आपने ये प्रिडिक्ट किया था कि भाई पाकिस्तान ने फाई लगा देना और फाई लगा दिया पाकिस्तान ने। क्या कहते हैं आप?
यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल हमारी जो डिस्कशन हुई थी तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान 50% जीतेगा और जो न्यूजीलैंड है उसके भी चांसेस 50% थे, लेकिन फिर बाद में पेट्रियटिज्म आ गई थी बीच में तो मैंने 60% पाकिस्तान को कह दिया था और 40% न्यूजीलैंड को। और बाकी यार आज का मैच बड़ा अच्छा रहा। मेरे ख्याल में काफी पॉजिटिव चीजें हैं जो पाकिस्तान इस सीरीज से लेके जा रहा है, और जिसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है वो ये है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर फाइनली हमें कोई शेप होता हुआ नजर आ रहा है और चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में क्या तासुरात है, स्पेशली डेथ बॉलिंग पाकिस्तान की।
बिल्कुल यार नीज, पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है थ्रू आउट। हमने देखा कि इंग्लैंड वाले कुछ एक दो मैचेस में थोड़ा सा हमने स्ट्रगल किया था, लेकिन वो भी इस वजह से किया था क्योंकि मेन हमारे बॉलर्स नहीं खेल रहे थे और हम दूसरे बॉलर्स को चांसेस दे रहे थे। लेकिन हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम, हमने देखा है बड़े कंसिस्टेंट हमारे परफॉर्मेंस चल रहे हैं डेथ ओवर्स के अंदर। और मेरे ख्याल आखिरी 5 ओवरों में आई थिंक पाकिस्तान ने 33 रन्स दिए हैं, शायद 4 विकेटें ली हैं, तो वो तो बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन पावर प्ले में उमेर साहब थोड़े से कंसर्न नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पे हमारे बॉलरों को थोड़ी मार पड़ रही है। क्या कहते हैं उस पे?
यार आपने बिल्कुल सही पॉइंट अभी रेस किया है जो पावर प्ले वाली बात है। आज भी हमने देखा उन्होंने 6 और 50 रन मारा है, आई थिंक 54 तक मारा है। अब वहां पे जलाल मेरी एक सजेशन है जिसमें मैं आपसे भी आपकी राय पूछूंगा। मैं जिस तरह अगर हम देखें पाकिस्तान की बॉलिंग को तो पाकिस्तान ने सीमर से ही सारे पावर प्ले कराया है। अगर वहां पे एक स्पिनर से ओवर आ जाता तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो होता है कि चेंज ऑफ वेरिएशन आ जाती है तो बैट्समैन थोड़ा मतलब थोड़ा सा शायद जो आपका स्कोर है वो थोड़ा कम हो जाता। ये मैं इस पे कहता हूँ क्योंकि एक अगर स्पिनर अगर आप देखें अगर स्पिनर हम लोग शुरू में नहीं लेके आते तो फिर स्पिनर्स की जगह बनती है 7 से 14 ओवर्स, तो फिर एक बैट्समैन जो कि टीम है जिसने अभी आना है खेलने के लिए उसका पहले से माइंड बना होता है यार कि मैंने स्पिनर्स को ही फेस करना है। तो ये वाली चीज थोड़ी मुझे लगी थी कि अगर पाकिस्तान शुरू में एक ओवर स्पिनर को दे देता तो शायद थोड़ा और पॉजिटिव हो जाता पाकिस्तान का। क्या कहते हैं आप?
नहीं देखो, बाबर आजम का पैटर्न तो पहले यही रहा था इस सीरीज से पहले कि वो नवाज से ओवर करवा ही रहा था पावर प्ले में, तो इस सीरीज में हमने वो नहीं देखा। मे बी ये शायद पार्ट ऑफ प्लान है कि हम ऑस्ट्रेलिया में सारे 6 के 6 ओवर्स हम शायद पेसर से करवाना चाहते हैं। लेकिन आपका पॉइंट ठीक है क्योंकि हमने देखा है कि न्यूजीलैंड ने भी स्पिनर्स को यूटिलाइज किया है, बीच में बांग्लादेश ने भी स्पिनर्स को यूटिलाइज किया, तो शायद ये एक वाकई चीज है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है जो पाकिस्तान पता नहीं क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहा उसको। बात तो ठीक है,
बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जिस तरह वो ब्रेसवेल का हमने देखा आज, उसने 2 ओवर कराए पावर प्ले में, हालांकि पाकिस्तान ने शुरू में स्टार्ट अच्छा लिया, 2 ओवरों में 19 रन था, लेकिन जब 3rd ओवर ब्रेसवेल कराता है तो 2 रन पड़ता है उसको और 5वें ओवर में आके विकेट ले जाता है वो, तो ये एक है बात।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बॉलिंग पे तो हमने बात कर ली, जो हमारी पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थोड़ी सी, उसमें क्रेडिट केन विलियमसन को भी जाता है कि हमने उन पे क्रिटिसाइज किया कि भाई वो उनकी स्ट्राइक रेट का बहुत ज्यादा इश्यू चल रहा है और अमंग वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स उनकी चल रही थी एज अ बैटर, और आईपीएल से वो स्ट्रगल कर रहे थे, सारा हमने पिछले एपिसोड में भी उसका जिक्र किया। लेकिन उन्होंने जो इंटेंट और क्लास शो की है और स्टेप अप किया एक फाइनल वाले मैच में, उसके बारे में क्या कहते हो यार? बड़ी जबरदस्त बैटिंग हुई है
यार, उसने बहुत ही कमाल की बैटिंग की है जलाल साहब। मतलब आज जब मैं मैच उसका देख रहा था, उसकी इनिंग देख रहा था, तो एक तो वो टेक्निकली साउंड तो है ही है ना, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन जो उनकी शॉर्ट सिलेक्शन थी, जिस तरह वो मतलब वो शॉर्टिक खेल रहे थे, तो काफी ज्यादा उनको क्रेडिट जाता है कि एक तो वो अभी आए टीम में आए, उन्होंने मतलब खेला है दोबारा आके T20, और उसके अलावा जो ये है कि साथ साथ आप देख रहे थे विकेट्स भी गिर रही थी, लेकिन इन्होंने अपना एक एंड अपना वो सेव किया हुआ था वहां से, मतलब के रना बॉल भी कर रहे थे साथ साथ, शॉटे भी मार रहे थे, तो काफी एक पॉजिटिव ये चीज न्यूजीलैंड के लिए भी कि वो भी कुछ यहाँ से मतलब जो विलियमसन की जो फॉर्म है वो मतलब अच्छी होगी है काफी।
हाँ नहीं, ये वाकई बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न था ये, और एज अ कैप्टन आपके ऊपर प्रेशर भी फिर बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन मुझे ये बताओ उमेर कि अब हमने ये देखा है न्यूजीलैंड का एक पैटर्न है कि शुरू में वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं फिन एलन के ऊपर कि वो हमें तेज स्टार्ट देगा, और उसके अराउंड कॉनवे और विलियमसन खेलेंगे, तो ये एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो एज अ यंगस्टर फिन एलन के ऊपर तो कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इस मैच में डिलीवर नहीं किया तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया था एकदम से।
यार थोड़ा प्रेशर है मैं बोलूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसको काफी ज्यादा बैकिंग है कैप्टन की भी मैनेजमेंट की भी। जिस तरह आज केन विलियमसन ने स्पेसिफिक उसका नाम लिया फिन एलन का और ब्रेसवेल का, कि बोला कि यार ये दोनों प्लेयर्स मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करें। और मेरे ख्याल में जो आप जिस तरह बात करें टेम्पलेट उनका भी कुछ इसी तरह ही है कि वो मतलब कि फिन एलन पे रिलाई करें थोड़ा कि वहां से एग्रेसिव आए थोड़ा, तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज है। क्योंकि हम लोग जब कॉनवे को देखते हैं और साथ फिर हम केन विलियमसन को देखते हैं, वहां से हमें उस तरह की एक जो कहते हैं कि स्ट्राइक रेट वो वाली एक्सपेक्टेशन हमें नजर नहीं आती। तो मेरे ख्याल में अच्छा है फिन एलन, मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंट है, उसका एक्सपीरियंस भी एक डोमेस्टिक में, तो अच्छा कर जाएगा वर्ल्ड कप में। क्या ख्याल है?
नहीं नहीं मुझे भी यही लग रहा है, फिन एलन की वजह से गप्टिल बायर हो गया तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे गप्टिल एज अ बैटर बड़ा पसंद है। लेकिन ठीक है यार, वक्त आता है वक्त जाता है, गप्टिल ने बड़ा सर्व किया है और अब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट लग रही है।
बाकी जलास सब आप मुझे ये बताएं कि हमने शुरू के ओवर देखे पाकिस्तान के, उसमें तो पाकिस्तान थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा था। एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि न्यूजीलैंड 180-190 को टच करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बाद में जो डेथ बॉलिंग कराई है पाकिस्तान के फेसर्स ने, उसके बारे में क्या ख्याल है?
नहीं बिल्कुल, जैसा मैंने कहा यार कि हारिस रऊफ एक्सेप्शनल है। पिछले मैच में हमने मोहम्मद वसीम को देखा था, उसने आखिरी ओवर में 3 रन दिए थे, इस मैच में हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 4 रन दिए और शायद वही डिफरेंस क्रिएट किया। क्योंकि देखो 15 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद 180 से ऊपर बना देगा, लेकिन वही जो आखिरी हमारे लास्ट 5 ओवर से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है और एक ऐसा टोटल बन गया जो हमारी बैटिंग लाइनअप को सूट करता था। ठीक है, लेकिन बैटिंग लाइनअप पर आते हैं, हमने हमने इस टारगेट को भी कैसे हमने अनसुटेबल बनाया उस पर भी हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा। लेकिन मुझे ये बताओ कि
अच्छा,
अगर
उससे पहले जलाल,
एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप मोहम्मद वसीम और हारिस की बात करते हो, वो तो हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक मैं शुरली इधर फेंकने लगा हूँ, क्या मोहम्मद वसीम को वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में देखोगे या नहीं देखोगे? क्योंकि डेथ बॉलिंग में तो नसीम थोड़ा सा और हसनैन स्ट्रगल करते हैं।
बिल्कुल यार, वर्ल्ड कप में अगर प्लेइंग 11 की आप बात करें तो उसमें तो मैं मोहम्मद वसीम को एज अ फोर्थ सीमर ही देख रहा हूँ, कि अगर पाकिस्तान एज अ फोर्थ सीमर किसी को खिलाता है तो फिर ही मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम की ज्यादा जगह बनती है। क्योंकि हमें पता है शाहीन शाह और जो नसीम शाह है ये तो जाहिर खेलेंगे, और साथ हारिस रऊफ ये भी होंगे, तो मेरे ख्याल में तीन पेसर्स तो होंगे ये लाजमी।
हाँ
तो
थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद वसीम अनलकी रह जाए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे वर्ल्ड कप में।
यार बिल्कुल हाँ रह सकता है, क्योंकि जिस तरह हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि आप फोर्थ सीमर अगर खिलाना है तो कल तो मतलब फाइनल पे खिला दे, कुछ इस तरह का भी था, तो इन्होंने नहीं खिलाया। बाबर आजम का माइंड ये है कि 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा वसीम हार्ड लक हो जाएगी उसके साथ, वो फिर वर्ल्ड कप के बाद ही आ सकेंगे। मेरा यहाँ पे सवाल जलाल आपसे ये था कि हम लोगों ने पहले एपिसोड्स पे बात की कि नसीम शाह जो है वो आखिरी ओवर्स में एक्सपेंसिव हो रहे थे काफी एशिया कप में, तो इस दफा जब हम देखते हैं ट्राई सीरीज में खासतौर पर इस मैच में तो वो थोड़े बेहतर रहे। हालांकि उन्होंने आई थिंक 17-16 ओवर था जिसपे पहली बॉल पे छक्का खाया था, उसके बाद वो ओवर काफी अच्छा निकाल दिया। तो क्या कहते हैं कि नसीम शाह एक अच्छी ऑप्शन है कि लास्ट में उससे ओवर कराया जाए?
यार एक आध ओवर तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन वो उस तरह वाला कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया। ये आपने अच्छी बात की कि वो स्लोअर वंस को यूज कर रहे थे और वो बाउंसर्स भी थोड़े से स्लोअर बाउंसर्स करा रहे थे, तो वो एक वेरिएशन देखने को मिली जो हमें हसनैन से शायद कम देखने को मिलती है डेथ में। तो एटलीस्ट नसीम का ये नजर आ रहा है कि वो कोशिश कर रहा है वेरिएशन करने की। ठीक है, पेस सिर्फ पेस मैटर नहीं करती यहाँ पे, आपको जज ऐसा होना चाहिए कि बैटर को ये पता ना हो कि अगली डिलीवरी कौन सी आनी है। तो उस एस्पेक्ट से तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो कि नसीम में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। लेकिन बाबर की आपने बात की थी, कॉम्बिनेशन की बात की थी, तो कप्तानी पे क्या कहते हो कि पावर प्ले में जिस तरह आपने बोला कि स्पिनर को यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन एंड में एक चीज आपने नोट की होगी कि डेथ ओवर्स में फाइन लेग का फील्डर पीछे रखा हुआ था ताकि वो जो लैप शॉट है वो ना मार सके बैटर, और उससे मेरा ख्याल है काफी इफेक्टिव काम हो गया।
आप बिल्कुल, ये मुझे याद है जलाल, हमारी एक एपिसोड थी, इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा था पाकिस्तान का, जिसपे फाइन लेग पे चौके मारे थे हसनैन को आई थिंक, वो
हाँ
वाली बात, वहां पे भी आपने पॉइंट उठाया था कि यार बाबर आजम ने यहाँ पे सही कैप्टेंसी नहीं की, फाइन लेग पे फील्डर नहीं उठाया, तो आज के मैच पे वो चीज रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आई, तो बड़ा अच्छा लगा यार कि मतलब कि बाबर आजम, मतलब कि वही बात है कि थोड़ा सा जो उनकी वीकनेसेस हैं वो उस पर काम करें, और मेरे ख्याल में वो जो फीडबैक उनको मिल रहा है जर्नलिस्ट वगैरह से भी और जो मतलब बाकी लोगों से, वो उसको वहां पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ये उनका बड़ा अच्छा डिसीजन था फाइनल लेग पे बंदा रखने का, क्योंकि जब हारिस रऊफ ने बाद में ओवर कराया लास्ट में, तो वहां पे जो बैट्समैन था वो पे शॉट नहीं मार सका फाइनल लेग में, उसको मतलब वहां पे प्रेशर था, तो ये बड़ी अच्छी
बिल्कुल
बात की आपने, बिल्कुल। तो जलाल साहब एक और बात आप मुझे ये बताया, अभी हमने बात कर ली भाई बॉलर्स की होगी, बैट्समैन खासतौर पर मिडिल ऑर्डर की होगी बात हमारी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है जिसमें बाबर है, रिजवान है और शान मसूद है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि जब मैं ट्विटर खोलता हूँ वहां तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, मैंने कहा उसको नहीं सुनता, मैं आपसे पूछता
नहीं,
हूँ।
आपने बिल्कुल यार टॉप ऑर्डर की बात की, तो यहाँ पे मैं उससे रिलेटेड कमेंट भी ले लेता हूँ वुडू पाक का। वुडू पाक कहते हैं रिजवान सारा प्रेशर बाबर आजम पर डालता है और वो अटैक करने पर आता है और आउट हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट बात की इन्होंने। हमने ये देखा है कि रिजवान लास्ट दो मैचों में तो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है। इंग्लैंड वाली सीरीज में हमने देखा था कि रिजवान स्ट्राइक रेट थोड़ा सा अपने इंप्रूव करने की कोशिश भी की उसने, लेकिन यहाँ पर आके ऐसे लग रहा है कि वो फंस रहे हैं, खासतौर पे स्पिनर के अगेंस्ट। ये एक अच्छा प्लॉय है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बाकी टीम भी इसको ज़रूर देख रही होंगी कि बाबर और रिजवान के आगे अगर स्पिनर को लगा दें तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि ये दोनों पेस को प्रेफर करते हैं, टाइम करता है बाबर खास तौर के ऊपर। तो ब्रेसवेल, जो हम पहले भी पॉइंट आउट कर चुके, कल काफ़ी डिटेल में हमने ब्रेसवेल के स्टैट्स भी बताए थे कि ये डोमेस्टिक में भी पार्ट टाइम बॉलर था, मेनली ही इज़ अ बैट्समैन, ठीक है, लेकिन उसको इतना इकोनॉमिकल स्पेल करा देना, और फिर वही वाली बात है जैसे इन्होंने बोला, प्रेशर में आके बाबर नॉर्मली स्वीप शॉट नहीं मारता, उसने वो स्वीप जब जब मारी है वो बेचारा आउट हो जाता है, तो वो भी इस बेचारे का अनलकी टाइम चल रहा है। बिल्कुल ये स्ट्रगल तो कर रहा है हमारा टॉप ऑर्डर, और शान की भी नहीं समझ आ रही भाई। आप क्या उस पर अब बात करें भाई?
यार शान की, बिल्कुल शान की नहीं समझ आ रही, हालांकि जब वो आ रहे थे, हालांकि जब फखर जमान थे हम लोग उसके बारे में कहते थे कि उसकी नहीं समझ आ रही, लेकिन जब अब मैं अगर कंपैरिजन करता हूँ फखर का और शान का, और ये जो कि मतलब जो इस पोजीशन पे खेलते हैं वन डाउन पे, तो मेरे ख्याल में मैं फखर जमान को ज्यादा प्रेफर करूंगा शान मसूद की जगह इस पोजीशन के लिए, देखा जाए तो जी,
देखो
क्योंकि
कैसे वक्त
फखर जमान
बदलते
की
हैं,
इंक्लूजन भी
जज्बात
होगी
बदलते हैं, हालात बदलते हैं। एक
जज्बा।
टाइम था जब हम कह रहे थे कि फखर भाई अब बहुत हो गई है,
हाँ
अब निकल लो भाई, ना फील्डिंग हो रही थी फखर जमान से और ना बैटिंग हो रही थी।
हाँ
लेकिन देखो नंबर
बल्कि
3 तो कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। इवन अगर फखर वापस भी आ जाता है तो वो वाला कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर तो अभी मेरे पास नहीं है कि क्या फखर आके बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट गेम कर देंगे, क्योंकि वो कर नहीं सके नंबर 3 पे परफॉर्मेंस। काफ़ी उनको चांस तो मिले हैं, शान से
बिल्कुल
ज़्यादा चांस मिले हैं उनको। तो शान, अच्छा शान का मसला ये भी था, देखो शान के साथ 2-3 मैचों में ये हुआ है कि पहली 4-5 गेंदें डॉट हो जाती हैं शान से, ठीक है, क्योंकि वो
बिल्कुल
क्रीज में इतना हिल हुल रहे होते हैं, मुझे लग रहा होता है वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह के पहली 1-2 बॉलों पर किसी तरह उनको कोई बाउंड्री मिल जाए बस, और फिर उनके नर्व्स जो हैं वो थोड़े एट ईज हो जाएं। वो बाउंड्री उनको मिलती नहीं है और उसके चक्करों में मजीद प्रेशर में आ जाते हैं, और जैसे उनकी बाउंड्री लगनी शुरू हुई, वो जो 2-1 चौके लगे उधर, 10 ओवरों की ब्रेक आ गई और फिर वो नेक्स्ट बॉल पे आउट भी हो गए। लेकिन उमेर साहब, 33 रन्स बनते हैं आपके पावर प्ले में, ठीक है, थर्टी थ्री
यार
रन्स
ज्यादती है, बहुत ज्यादती है, बहुत
क्या
ज्यादा
बोले
ज्यादती है,
बंदा।
मतलब के देखिए हम लोग तो 45-47 को अच्छा नहीं समझ रहे थे, जब कल आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने कहा था यार इतना स्कोर मारेंगे मतलब, लेकिन आज इन्होंने 33 मारे तो ये बहुत कम है, मतलब के ना ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जलाल, ये कोई यूए की पिचेस नहीं है, श्रीलंका की पिचेस नहीं है, वहां पे अगर इस तरह के पावर प्ले जाता है, लेट्स अगर आपने 200 चेस करना है, इवन अगर आपने स्टार्ट में पहली बैटिंग भी ले ली है, तब भी अगर आप 6 ओवरों में 33 कर रहे हो 5 ओवरों शुरू में, तो फिर आप क्या करोगे आगे, मतलब आप वहां से कितना खेच लोगे मैच,
वही बात
तो
है ना
ये तो बड़ा
यार,
एक अलार्मिंग है।
टॉप ऑर्डर तो हमारा मतलब वो अजीब सी, हालांकि यही मैचेस भी जितवाते हैं, लेकिन इनका तर्ज खेलने का इस तरह है कि यार उमेर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जब जीतता है तब भी क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि ये लोग खेलते इस तरीके से। अब आज का ये जो, अब मेरी तो कल का ही कहेंगे, कल का जो मैच था उसमें मैच तो फंसा दिया था टॉप ऑर्डर ने हमारे। अब वो अनरियल किस्म की अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आ गई हैदर अली से और मोहम्मद नवाज से। क्या कहते हो हैदर अली पे, क्योंकि हम काफी कह भी रहे थे कि हैदर अली को खिलाना चाहिए, फिर हैदर अली ने डिसअपॉइंट किया। ये शायद लास्ट अपॉर्चुनिटी थी हैदर अली के पास, और क्या खेला है वो।
यार बिल्कुल, उसने वही उसकी जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी है, क्योंकि पहले वाले मैचेस पे वो उस तरह खेल नहीं सक रहा था, तो हैदर अली ने मेरे ख्याल में काफी ज्यादा प्रेशर भी होगा उस पे इस चीज
बिल्कुल
का कि यार मेरे पास आखिरी चांस है। लेकिन उसने क्या कहते हैं गट्स दिखाए और एक अच्छी एग्रेसिव इनिंग खेली है, जिस तरह की वहां पे हमें वहां पे डिमांड थी इनिंग की, उसने उस तरह से इनिंग खेली। जिस तरह आप देखें पाकिस्तान का 14 ओवरों पे पाकिस्तान का स्कोर 97 था, तो मतलब फिर उसके बाद आया ये, तो इसने फिर वहां पे छक्के मारे, तो वो एक मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था सोधी का ओवर जो आया था बीच में। तो हैदर अली की जगह पक्की हो गई है प्लेइंग 11 में भी आई थिंक, तो ये सीन है। तो आप मुझे ये बताएं जलाल साहब, हमने अभी मिडिल ऑर्डर पे बात की, वहां पे एक सवाल रह गया था मेरा। सवाल ये था कि जब आपका आउट होता है रिजवान, हाँ जब रिजवान आउट होता है, तो हम लोग वहां, तो वहां पे मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि वहां पे शादाब आएगा, तो वहां पे आ गया नवाज। इसके बारे में क्या कहते हैं, ये अच्छा स्टेप था या क्या सीन था इसका,
अच्छा, थोड़ा सा
मतलब
ट्रिकी था। मैं भी
रिस्की।
ये सोच रहा था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ब्रेसवेल आई थिंक आखिरी ओवर अपना बॉल कर रहा था, और मैं समझ रहा था कि राइटी को भेजेंगे ताकि जो है वो उसको ऑफ स्पिनर को काउंटर कर सकें, ये ना हो कि नवाज आते ही आउट हो जाए। लेकिन वो एक ट्रिकी डिसीजन था, और नवाज भी पहली 14 गेंदों पे उसके कुछ ज्यादा रन्स नहीं थे, लेकिन जैसी हैदर ने मारा है, आके इंटेंट शो की है, तो फिर नवाज ने भी अप दी एंटी वाला सिचुएशन कर दी। और यार अनरियल, वो जो 8-10 गेंदे थी वो तो इन्होंने सऊदी वाला ओवर और उससे नेक्स्ट ओवर आई थिंक उसका था, सऊदी का था आई थिंक, उसकी भी पहली 2 गेंदों पे शायद उसने चौके मारे थे हैदर ने। तो वो जो 8-9 बॉलों का जो पीरियड था उससे मैच ही चेंज हो गया सारा। लेकिन क्वेश्चन ये उमेर साहब कि क्या ये
हर बारी
मैच
हो
हर दफा हो
सकता
सकता है इस तरीके से, मतलब
नहीं हो
आपने
सकता, हर
फंसा
बारी हो
दिया
भी नहीं
था।
सकता। देखिए यार जलाल, आपका यूं हर बारी नहीं हो सकता, आपके अगर लेट्स सपोज आखिरी 10 ओवर में 100+ चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता हर बारी के हैदर अली आके छक्के मार दे या आसिफ अली मार दे या नवाज शादाब मार दे। तो मेरे ख्याल में वही बात है कि मिडल ऑर्डर थोड़ा बेहतर ओवर है। अब यहाँ पे जरूरत है टॉप ऑर्डर की। पहले तो टॉप ऑर्डर कहता था ना कि यार हमारा मिडल ऑर्डर जो है वहां पे कैपेसिटी नहीं है इतनी, सही है
हाँ
उन लोग, वो लोग नहीं इतना सरवाइव कर सकते। अब हमें नजर आ रहा है कि जब नवाज और शादाब ऊपर आते हैं तो मिडल ऑर्डर थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तो अब ऊपर से टेक्निक की चेंज होने की जरूरत है, खास तौर पे रिजवान की, क्योंकि बाबर का ये है बाबर से शॉट नहीं लगती, चलो आउट हो जाता है। और हाँ
नहीं, सही कह रहे हो। हसन आरिफ साहब कह रहे हैं, ब्रो आप कह रहे हैं कि शान चाहता है कि शुरू में एक दो बाउंड्री लग जाए तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, लगेगी तो तब जब आप में खुद टैलेंट हो। यार ये बात भी आपकी ठीक है, स्किल लेवल का थोड़ा सा फुकदान तो नजर आता है खासतौर पे पावर हिटिंग गेम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि शान ने परफॉर्मेंस के बगैर वो टीम में आए हैं। मतलब अगर आप इस टाइम के ऊपर T20 का पूरे साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, तो सबसे जो हाईएस्ट रन गेटर है T20 फॉर्मेट में वो एलेक्स हेल्स है, और सेकंड नंबर पे शान मसूद है, और उसने इंग्लैंड में भी जाके परफॉर्मेंस किए, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस किए। तो ऐसा नहीं है कि वो बगैर परफॉर्मेंस के आ गए टीम में, ये अलग बात है कि जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए अब तक। तो मैं तो इस पे यही कहूंगा। मैं, आप क्या कहते हो?
यार बिल्कुल, मैं इस पे ये बोलूंगा कि शान मसूद का वही बात, एक टैलेंट तो है उसमें, क्योंकि ये वाहिद बंदा है अभी पिछले के जो अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर आया, इसने कोई नेगेटिव बातें नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन ये एज ए T20 बैट्समैन उस तरह नहीं है, खासतौर पर वन डाउन पोजिशन में। मतलब कि
हाँ
अगर लेट्स सपोज अगर बाबर स्ट्रगल कर रहा होता या रिजवान स्ट्रगल कर रहा होता, फिर हम शान मसूद को लेके आते हैं। शान मसूद प्रॉपर आपका टेस्ट बैट्समैन है या आपका ओडीआई बैट्समैन है, वहां पे ये प्रॉपर फिट होगा और देखना वहां पे परफॉर्म भी करेगा ये।
यार,
T20
इसका
में इतना
कॉन्टेक्स्ट भी
उस तरह
समझना चाहिए ना। देखो शान टीम में आया क्यों, शान टीम इस वजह से आया कि आपका जो पावर हिटर है फखर जमान वो मिजरेबली फेल हो गया, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि फील्डिंग में भी। ठीक है, तो उस पे तो सारे लोग मतलब मीम्स बननी शुरू हो गई थी कि फखर को अब बाहर ही निकल जाना चाहिए। अब आते हैं शान, उनसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि थोड़ी स्टेबिलिटी देंगे, खास तौर पे अगर बाबर और रिजवान में से कोई आउट हो जाता है जल्दी। लेकिन वो तो बिल्कुल ही मतलब वनडे मोड में खेलने की वो कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली। हमने उस नंबर पे इफ्तिखार को भी ट्राई किया, इफ्तिखार भी आके वहां पे शुरू में बहुत ज्यादा गेंदे कंज्यूम कर जाते, तो नंबर 3 तो कंसर्न है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फखर वापस भी आ जाए तो मुझे नहीं पता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा इस टाइम के ऊपर। तो नंबर 3 तो हमारा बड़ा मसला चल रहा है भाई।
यार नंबर 3 मसला है, वही बात है, ये सब मसले तब हल हो सकते हैं अगर हम बाबर, ये जो बाबर आजम है वो वन डाउन आ जाए और फेस में आपका फखर जमान आ जाए या उसकी जगह वो आ जाए, मतलब कि कोई और स्ट्राइकर आ जाए
इस पे तो हम बहुत
वहां पे
बात
लिवांट
गिर
के
चुके हैं ना
साथ।
उमेर, लेकिन अब ये होना नहीं है ना, तो इस पे अब क्या बंदा बात ही क्या करे।
यार इसका
क्रिकेट
फिर
थ्री
यही हल
सिक्सटी का
है।
कमेंट लेते हैं, वो कहते हैं
हाँ
पाकिस्तान
क्या
टीम को
कहते हैं,
अपना पावर प्ले में रन्स करने होंगे। यही बात
बिल्कुल
हम कर
करने
रहे हैं,
होंगे,
लेकिन
बिल्कुल करने होंगे।
अब बाबर और रिजवान ने नहीं करने हैं। अगर वही ऑनरशिप ले रहे हैं तो उन्हीं को करने हैं, अब उन्हीं को कुछ पावर हिटिंग दिखानी है उमेर। अच्छा एक और भी है कमेंट,
बिल्कुल सही बात है। और आज के मैच में तो यार रिजवान काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, है जलाल, आज के मैच में तो रिजवान काफी ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहे थे, उनसे तो
बिल्कुल।
मतलब शॉट खेली भी नहीं जा रही थी बिल्कुल।
अच्छा वुडुपा कहते हैं बाबर आजम को
ऊपर
नंबर
एक
वन
कमेंट आपने
होने
मिस कर दिया
से
है। हाँ
रोक रहा है प्रेशर डाल के। अच्छा इसमें मुझे कोई पॉलिटिकल वाइब आपकी नजर आ रही है कि रिजवान नंबर वन होने से रोक रहा है कि
यार मेरे
रिजवान
ख्याल यार मेरे ख्याल बाबर आजम ठीक ही खेल रहा है एज ए कैप्टन भी, मतलब वो जो अपने स्टैट्स वगैरह बना रहा है ठीक बना रहा है, बस ये है कि थोड़ा रिजवान की वजह से थोड़ा हो जाता है एग्रेसिव, एग्रेसिव आता है तो आउट हो जाता है, लेकिन उस तरह प्रेशर नहीं लेता अपनी कैप्टनसी का।
यार देखो एशिया कप में तो लिया है कैप्टेंसी पे प्रेशर, कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं लिया, आई थिंक उसकी बैटिंग का प्रेशर उसकी कैप्टेंसी पे रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पे आप ठीक कह रहे हो, थोड़ा सा
हाँ
ऐसा लग रहा है कि बाबर अब अपनी विकेट ये नहीं कर रहा कि यार मैंने आउट नहीं होना। ये हमें देखने को एटलीस्ट नजर आया है इस सीरीज में कि बाबर जा रहा है शॉटों की तरफ, कि आउट हो भी गया तो खैर है, लेकिन रिजवान में हमें वो नजर नहीं आ रहा। रिजवान बिल्कुल सेव गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या उनको कोई ट्रस्ट का फैक्टर का इशू है या क्या चक्कर है मिडिल ऑर्डर पे। अच्छा अब मिडिल
बिल्कुल।
ऑर्डर पे
अच्छा
नवाज
एक और
की
बात, हाँ
बिल्कुल बोले
हाँ
बोले,
बोले बोले।
अब आप
अच्छा
बोल
मैं कह रहा था कि मोहम्मद नवाज को हमने देखा कि भाई वो आके जब आते मिडल ऑर्डर पे परफॉर्म करता है, और जैसे हमने इंडिया वाले मैच पे भी देखा, आज भी देखा, कल भी देखा पिछले मैच पे, तो जिसके ऊपर विक्रम गुप्ता ने भी काफी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है कि ये पाकिस्तान के हार्दिक पांड्या की तरह है कि मेन एसेट है वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का, तो आप कैसे देखते हैं नवाज को?
यार देखो बॉलिंग में थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं कुछ लास्ट 2-3 मैचों में, क्योंकि हम पहले देख रहे थे कि एशिया कप में तो खैर बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन वो उन्होंने कवर अप कर दिया कहीं ना कहीं। मैं इनको हार्दिक पांड्या नहीं बोलूंगा, मैं इनको रविंद्र जडेजा बोलूंगा। जिस तरीके से जडेजा भी बॉलिंग उनकी थोड़ी कम होती जा रही थी, अभी अगर हम लेटर उनके स्टेजेस पे देखें तो वो एज अ सिर्फ वो इस तरह के बॉलर रह गए थे कि वो रन रोकेंगे, वो विकटे नहीं ले रहे थे और उनको रन भी पड़ना शुरू हो गए थे एंड में, लेकिन बैटिंग उनकी बहुत इंप्रूव हो गई थी। तो अब अगर आप देखो एशिया कप से अब तक तो रिजवान सॉरी रिजवान कह रहा हूँ मोहम्मद नवाज 3 मैचेस तो आपको जिता चुका है बैटिंग से, इतने तो शायद आसिफ वगैरह ने भी नहीं जितवाए मिडिल ऑर्डर में, और किसी ने नहीं इतने मैचेस जितवाए।
सही बात है, नहीं सही बात, सही कह रहे हैं कि नवाज जो इम्पैक्ट डाल रहा है इसका एविडेंस है सामने, और कम मैचेस में सैंपल सेट भी छोटा है, तो इस चीज को इनको माइंड पे रखना चाहिए खासतौर पे वर्ल्ड कप के लिए। हाँ
ये राजेश कुमार साहब आई थिंक ये काफी दिनों बाद वापस आए हैं यार। अब आपने हिंदी में कुछ आगे लिखा है, मुझे उसकी भाई समझ नहीं आई, लेकिन इतना मुझे समझ आ गई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच के बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे हो। उस पे अभी हम आगे जाके आते हैं, क्योंकि स्क्वाड पाकिस्तान का फाइनल अनाउंस हो गया है और इसके मुतल्लिक हारिस हसन हारिस ने भी ऊपर आई थिंक पूछा हुआ था, उनका कमेंट भी शो कर देते हैं। उन्होंने भी पूछा हुआ था फाइनल स्क्वाड क्या है पाकिस्तान की। बिल्कुल सर उस पे भी हम अभी आते हैं, आपको पूरा स्क्वाड बताते हैं कि क्या स्क्वाड है और स्क्वाड में कौन सा प्लेयर लकी रह गया है और कौन सा अनलकी रह गया हमारी नज़र में,
बिल्कुल।
उस पे भी बात करते हैं।
बाकी जो लोग अभी हमें, बाकी जो लोग अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको उसको आप एनेबल कर लें, ताकि जो भी हम अभी वीडियो बनाएं नेक्स्ट, आपकी आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए।
बिल्कुल आज उमेर शुरू में इंटरनेट थोड़ा ना तेरा मसला कर रहा था, लेकिन अभी आई थिंक थोड़ा ठीक हो गया
अच्छा
है, शुरू में ना ज़रा लैग ज़्यादा आ रहा था। अच्छा
चलो यार शुक्र है, थोड़ा बेहतर
हसन
ही
आरिस
हुआ।
कह रहे हैं जितने रन शान मसूद कर रहे हैं अपने पीक पे उतने रन तो फखर आउट ऑफ फॉर्म में कर रहा था। यार देखो, अगर आप स्टैट्स निकाल के देखो ना नंबर 3 के ऊपर, तो हार्डली 130 का स्ट्राइक रेट फखर का है, और 130 का स्ट्राइक रेट ही ऑलमोस्ट अराउंड इसका है, शान मसूद का. तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इवन आप ये भी देखो कि फील्डिंग में भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं हूँ मैं. कैचेस फखर भी छोड़ रहे थे, और कैचेस वो भी छोड़ रहे हैं, शान मसूद भी. तो ये दोनों का मसला तो चल रहा है. अच्छा, कैसर साहब का भी ले लेते हैं.
यार हाँ, मसला चल रहा है। बस मैं यहाँ पे ये यह कि फखर जमान का थोड़ा एक रोब है मेरे ख्याल में कि यार अच्छा फखर जमान आएगा वो मारेगा, मतलब जो ओपोनेंट है वो उसको उस एंगल से देखता है, और शान मसूद के बारे में जो ओपोनेंट है वो ये सोचता है यार चलो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये थोड़ा एक माइंडसेट का फर्क है ओपोनेंट का, मतलब जब ये दोनों आएंगे।
बिल्कुल. अच्छा, आगे कमेंट भी लेते हैं, लेकिन इसको अगर हम वाइंड अप करते ताकि हम उस पे वर्ल्ड कप स्क्वाड पे चले जाएं, तो मुझे सिर्फ ये बताओ, हमने दो बंदों का मैं जिक्र करना चाहूंगा. अभी हमने बैटिंग बॉलिंग सबका जिक्र कर लिया, आप इफ्तखार की इनिंग्स को कैसे देखते हो जो इसने आज इस मैच में खेली, फाइनल वाले में?
यार आज की इनिंग उसकी काफी अच्छी है, मतलब कि मेरे ख्याल में इसका रोल यही होना चाहिए, फिफ्थ डाउन आए और आके खेले, क्योंकि हमने देखा जब ये ऊपर आता है तो ये काफी मतलब काफी स्लो हो जाता है, मतलब कि जो स्ट्राइक रेट वगैरह काफी कम हो जाती है। लेकिन आज जिस तरह हमने देखा कि ये इसने बड़ा एक एग्रेसिव माइंडसेट था इसका भी, जो कि बड़ा कम देखने को मिलता है इफ्तिखार का, तो एक ये अच्छा है, मतलब कि ये वाली पोजीशन इसकी ठीक है, और इसकी मतलब इसी तरह है कि आखिर में 3-4 ओवर रहते हो और आपने मतलब उस टाइम खेला, उस तरह का ये मतलब ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्या ख्याल है आपका?
बिल्कुल. अच्छा, इस पे मैं ट्विटर को भी शामिल करूंगा बीच में, क्योंकि इस टाइम के ऊपर ये स्ट्रीमिंग हमारी ट्विटर पे भी हो रही है, यूट्यूब पे भी हो रही है, ट्विच पे भी हो रही है, फेसबुक पे भी हो रही है. तो मैं ट्विटर पे भी एक शामिल करूंगा, क्योंकि ये हमने एक ट्वीट भी की हुई थी कि शायद इफ्तखार के लिए जो सबसे बेस्ट रोल है ना, वो एज अ फिनिशर का ही है. तो उस पे एक, आई थिंक, आई एम सपोजिंग कि ये इंडिया से एक भाई है, उनका नाम है, आई थिंक मुश्किल नाम है, प्रधे प्रधे उमना उपद उपदया, या पता नहीं इस तरह करके कुछ नाम है. भाई माजरत कि मुझे वो नाम आपका थोड़ा मुश्किल है, प्रोनाउंस सही नहीं हुआ. लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ये बोला था कि भाई ये तो उसी तरह कहने वाली बात है कि जैसे आप कह रहे हो इफ्तिखार को एज अ फिनिशर समझो. वो ये कहते हैं कि भाई नसीम शाह ने एक मैच में आपको छक्के मार के जिता दिया, तो आप उसको भी एज अ फिनिशर फिर मानना शुरू कर दो. लेकिन उनको फिर हमने आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि भाई अगर आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी देखो इफ्तखार का, और पाकिस्तान में भी जब इफ्तखार ने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो वो नीचे आगे की है. तो क्या कहते हो इस बारे में?
यार बिल्कुल, आपने जो नसीम की पहली बात की है उस पे, तो मैं यही बोलूंगा कि ये वाली बात से मुझे सकलैन मुश्ताक याद आ गए। वैसे जलाल, उनसे जब वो मैच नहीं हुआ था, एशिया कप था आई थिंक, जिसपे कहा था कि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप तो बहुत लंबी है जिसमें 11वें प्लेयर तक आपको छक्के मार सकते हैं बंदे, कि
हाँ.
मतलब कि 11वें नंबर तक बैट्समैन आपके हो सकते हैं। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है, मतलब ऐसे मतलब इस तरह नहीं कहना चाहिए, आपका वो आपके प्रॉपर बॉलर ही है। और जैसे इफ्तिखार की बात की, इफ्तिखार का वही PSL देखें आप, डोमेस्टिक देखें,
हाँ.
वो फिफ्थ डाउन आया है और उसने परफॉर्म किया है, तो ये आपने बड़ा सही आर्ग्यूमेंट दिया उनको। तो फिर वहां पे उन्होंने आगे से क्या बोला है,
नहीं, वो
मान
यही
गए
कह रहे
थे
थे,
आप?
वो ये कह रहे थे कि इफ्तखार, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, इफ्तखार लाइक मिसबाउल हक एक एंकर रोल अदा कर सकता है, नॉट एज अ सोली एज अ फिनिशर, लाइक समवन लाइक आसिफ अली, जिस तरह हम कहते हैं कि फिनिशर रोल, या उस तरीके से. आर्गुमेंट उनका भी था, वैलिड था, लेकिन एक अच्छी वो उनके साथ डिबेट हुई, तो मैंने कहा उनको भी शामिल कर लेते हैं कि ट्विटर वाली ऑडियंस भी हमारी थोड़ी सी बीच में शामिल हो जाए. अच्छा, उमेर इफ्ती भाई का तो हो गया, आसिफ भाई के बारे में क्या ख्याल है?
यार आसिफ अली, इस पे तो कोई शक नहीं है कि उनका एक इम्पैक्ट तो होता है, मतलब अगर वो खेल जाए, मतलब अगर वो खेलते तो वो पाकिस्तान को मैच जिता देते हैं। लेकिन जिस तरह हमने इंग्लैंड से लेके अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं उनका जो एक स्टैट्स, जो अगर हम देखें डेटा पे बात करें, तो वो तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आया, मतलब
10 में से
कि जो
एक
उनका
मैच
होना
वाला
चाहिए था।
चक्कर ही लग रहा है भाई. हैं?
हाँ बिल्कुल, मतलब कि उनको ऊपर भी चांस मिला ठीक है, 10वें 11वें ओवर में भी वो आए, उसमें भी वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं डाल सके। तो मेरे ख्याल में आसिफ अली की पोजीशन अब थोड़ी सी वीक हो सकती है, क्योंकि हैदर अली स्ट्रांग हो गया, सही है, हैदर अली का
बिल्कुल.
सैंपल सेट छोटा है, लेकिन उसने उस पे उस लेकिन उसने वहां पे प्रूव करके दिखाया है। तो लेकिन मेरा ज्यादा ख्याल है जलाल, इसको रखेंगे प्लेइंग 11 में इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि इसको थ्रू आउट खिलाते रहे, और अब अगर अगर नहीं खिलाएंगे तो वो फिर वो पीसीबी के ऊपर बातें होंगी, यार आपने आसिफ अली को इतना बड़ा रन दिया है,
उस पर अभी
तो
वर्ल्ड कप
क्या कहते
स्क्वाड पे
हैं।
आते हैं ना कि टीम कॉम्बिनेशन क्या बनता है, क्योंकि मैं उसमें एक शिलिंग फिर फेंकूंगा जिसमें आसिफ अली का आई थिंक थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो जाएगा। लेकिन अब चलो ये बात होगी, मैच पाकिस्तान बड़ा अच्छा जीता, मतलब फंसा के जीता, और जिस तरीके से नवाज और हैदर ने बैटिंग की और हाजिस रऊफ ने और मोहम्मद वसीम वगैरह ने बॉलिंग की, तो उसके लिए उमैर अप्लॉज तो बनता
क्या बात है, क्या बात है,
है।
बिल्कुल बस यार वो सही है। हाँ नहीं बिल्कुल अप्लॉज बनता है, बस वही बात है, कैचेस विन मैचेस होता है, और आज हमने देखा कि बाबर आजम के पास एक कैच आया था, आसान सा कैच था, वो कैच हो जाता तो शायद अप्लॉज थोड़ा और ज्यादा करने में मजा
हाँ,
आता।
लेकिन फिर भी कैचेस बिन मैचेस उल्टा हो गया ना, हमने छोड़ के भी मैच जीत लिया है। कुदरत
अब ये वही बात है, अब यहाँ पे कुदरत वाली बात आ जाएगी,
का निजाम है,
सो में एक
कुदरत का
होता
निजाम है।
है।
अच्छा, राजेश कुमार साहब ने कुछ कहा था, मेरी इंडिया से हार्दिक पांड्या जीतता है, इसकी भाई मुझे समझ नहीं आई कॉन्टेक्स्ट की, इसको जरा दोबारा कमेंट करके जरा एक्सप्लेन कर दें क्या कहना चाह रहे हैं आप। अच्छा, कैसर अहमद साहब पूछते हैं, शोएब मलिक को शामिल करेंगे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में या नहीं। अच्छा, अब मैं आपको उमैर बता दूं इनको भी सबको कि भी स्क्वाड तो हमारा फाइनल हो गया है, और फाइनल स्क्वाड में शोएब मलिक नहीं है, है उमैर साहब।
बिल्कुल ऐसा ही है, और शोएब मलिक ने एक इंटरव्यू भी दे दिया है जिसमें उन्होंने थोड़ी सी बातें रिफ्लेक्ट कर दी हैं कि उनका चांस नहीं बन सकता वर्ल्ड कप स्क्वाड में, और मुझे उनकी बातों से ये लगा कि अगर पाकिस्तान लेट्स सपोज अच्छा नहीं खेलता, मतलब कि वर्ल्ड कप के बाद जो चेंजेस होंगी टीम में तब शायद उनका सीन बन सके, उससे पहले तो मुझे नहीं लग रहा कोई चक्कर है।
बिल्कुल, तो जो लोग हमें आगे अपने पॉडकास्ट पे भी ऑडियो में भी सुनेंगे, गूगल पॉडकास्ट पे, एप्पल पर, स्पॉटिफाई वगैरह पर, पॉडचेजर, जो भी मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए भी और बाकियों के लिए भी मैं अभी स्क्वाड बता देता हूँ जो फाइनल पाकिस्तान का है वो क्या है। वो है जी
बिल्कुल बताएं।
बाबर आजम कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, आसिफ अली हैं स्क्वाड में, फखर जमान रिजर्व से मेन स्क्वाड में चले गए हैं, हैदर अली हैं, हारिस रऊफ हैं, इफ्तखार अहमद हैं, खुशदिल शाह हैं मेन स्क्वाड में, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान जो कि वाहिद विकेट कीपर है मेन स्क्वाड के अंदर, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद, ये मेन स्क्वाड है। और ट्रैवलिंग रिजर्व्स में मोहम्मद हारिस हैं जो कि बैकअप विकेट कीपर होंगे, शाहनवाज दहानी बैकअप फास्ट बॉलर हैं, और उस्मान कादिर क्योंकि उनका थंब का हेलाइन फ्रैक्चर हुआ था तो वो मेन स्क्वाड से निकलकर रिजर्व्स में चले गए। तो मैं इसमें अब मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं आपसे, खुशदिल
करें
शाह
करें
की
क्वेश्चन बताएं।
इंक्लूजन मेन स्क्वाड में सही है, और शान मसूद की इंक्लूजन मेन स्क्वाड में, क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं है मेन स्क्वाड में कि अगर रिजवान को कुछ हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है अभी इन सीरीज में भी रिजवान की जगह हारिस एक दो मैचेस में उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी देर विकेट कीपिंग की थी, और कोई आपके पास स्पिनर ही नहीं है सर फॉल बैक के लिए।
यार बिल्कुल, इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो है खुशदिल की इंक्लूजन और शान
हाँ
मसूद की इंक्लूजन ना,
हाँ उसकी जगह क्या
देखिए
हम मोहम्मद हारिस को या कोई एक ऑलराउंडर और डाल सकते थे कि अगर शादाब नवाज में से कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है।
यार मेरे ख्याल में ना कि जिस तरह अगर हम अभी देखें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है, और जिसपे मिडल ऑर्डर की भी बात करें कि मिडल ऑर्डर में आपके पास प्लेयर्स तो हैं अभी, ठीक है, और प्लेयर्स में ऐसा भी सीन है कि आपके प्लेयर्स जाया भी हो रहे हैं बैट्समैन में,
हाँ
तो उसको अगर मैं अपने सामने रखूं ये वाले पॉइंट को, तो खुशदिल की इंक्लूजन पे मुझे थोड़ा पॉइंट है कि खुशदिल की जगह मोहम्मद हारिस को आना चाहिए था, क्योंकि आपने वो वाला कीपर रखा हुआ रिजर्व में, और रिजर्व वाला प्लेयर आपका उस तरह नहीं खेल सकता, मतलब जब तक आपका रिजवान फुली इंजर्ड उस तरह हो, तो मेरे ख्याल में हारिस को आना चाहिए था खुशदिल की जगह। बाकी फखर और शान मेरे ख्याल में ठीक है, मतलब इस पे मुझे कोई इस पे कोई आर्ग्यूमेंट कुछ उस तरह नहीं है सीन कि मैं कि मतलब बोलूं कि शान मसूद को नहीं होना चाहिए, तो हाँ ये मैं इस पे
बिल्कुल,
बोलूंगा,
तो जैसे ही पाकिस्तान
आप
के
क्या कहते
स्क्वाड
हैं।
की बात की है वहां पे SS98 साहब भी अपनी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि जी मोहम्मद शामी ने जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट के लिए वो फाइनलाइज हो गए हैं, और शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज जो हैं वो रिजर्व्स में हैं, और इस पे भी काफी बहस हो रही है क्योंकि अभी सिराज ने रिसेंटली बड़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी आई थिंक रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में, तो काफी डिबेट हो रही है कि क्या सिराज को होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ शामी। तो उमेर आप क्या कहते हो इससे? उमेर की तो आई थिंक अड़ गई है, सीडी अड़ गई है। मैं अपना ही वर्डिक्ट दे देता हूँ जी। उमेर साहब
यार,
आवाज आ रही
इसमें
है?
जैसा मैंने पहले भी बात की थी, जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज?
बिल्कुल, अब आ
मेरे
रही है,
ख्याल
अब
में
आ
एक
रही
तरह
है,
डिस्टॉर्ट कर गया था। अच्छा
अब आ रही है।
चले, शुक्र है। अच्छा, मैं कह रहा था जलाल, इस पे हमने पहले भी बात की थी जब वो उस टाइम बातें हो रही थी कौन आएगा कौन आएगा। मेरा वोट शामी के साथ था। शामी के साथ जाने की वजह ये थी कि वो एक्सपीरियंस था और मैं कोई रिस्क उस तरह नहीं लेना चाह रहा था इंडिया के स्क्वाड में, तो मेरा वोट शामी के साथ ही था और वो आगे मतलब अच्छा हो गया। आपका किसके साथ था?
यार शामी वॉज अ सेफ ऑप्शन। मैंने तो पहले भी एक तरीके से जब बात की थी, तो मैं तो पुरानी अगर बात करूं तो मैं तो उमरान मलिक टाइप के, मैं आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे इंडिया की लाइनअप में ना पेस बॉलर की एक मिसिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है। सिराज वॉज अ गुड ऑप्शन एज वेल, क्योंकि सिराज का मैं देख रहा था 140 अबव रेगुलरली वो बॉलिंग कर रहे हैं, और उन्होंने डेथ में भी अच्छी बॉलिंग की है, तो सिराज भी शायद हो सकते थे, बट शामी वॉज ऑलवेज अ सेफ ऑप्शन।
यार हाँ बिल्कुल, लेकिन जलाल यहाँ पे एक सवाल है आपसे मेरा। देखे, शामी को अगर इन्होंने रखना था सही है, तो पिछले मैच सिराज को क्यों खिलाए?
क्योंकि वो कोविड का शिकार थे और आई थिंक वो फुली रिकवर नहीं हुए थे, तो ये भी एक पॉइंट है कि शामी जा रहे हैं बगैर मैच फिटनेस के और कोई बगैर मैच खेले, तो ये भी एक है। अच्छा, अब इस पे सवाल फेंकते हैं ना, जो हमारी इंडियन ऑडियंस देख रही है, SS98 साहब हैं, राजेश कुमार साहब हैं, तो वो बताएं कि भाई आपकी नज़र में क्या बेहतर ऑप्शन थी, शामी या सिराज? शार्दुल तो चलो समझ आती है, वो तो एक ऑलराउंडर है, या हार्दिक पांड्या की काइंड ऑफ वो रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, फुली बॉलिंग तो वो उस तरह शायद नहीं रिप्लेसमेंट कर सकते, तो ये है। उस पे थोड़े से कमेंट भी ले लेते हैं। कैसर अहमद साहब ने तो कहा था, अच्छा उनका तो हमें बता दिया कि शोएब मलिक जो है वो स्क्वाड में नहीं होंगे। वुडू पाक कहते हैं रिजवान को टेस्ट मैच का नंबर 1 बैट्समैन होना चाहिए था, वो लकी से T20 का नंबर। यार ना करो यार, ना करो, उसने बेचारे ने बड़ी परफॉर्मेंस भी दी है यार, ऐसे तो वर्ल्ड नंबर 1 नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे गैप है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। क्या ख्याल है उमर?
यार करना चाहिए इम्प्रूव, जाहिर है अब इतना उसके मतलब जो स्ट्राइक रेट पे बातें हो रही हैं और सारी बातें लॉजिकल है, मेक सेंस कर रही है हर बात, तो उस चीज पे काम करना चाहिए। और अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा सीन है जलाल, मोहम्मद रिजवान की मैंने जब भी उसके हम लोग देखते हैं नहीं, उसका माइंड सेट एक ही होता है। मतलब कि मैं इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उस तरह, मैं मतलब वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम देखते हैं जब बाबर आउट हो जाता है या इवन आपके नीचे मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स कर जाता है, तब भी रिजवान अपने स्टाइल पे ही खेलता है, वो अपना स्टाइल चेंज नहीं करता गेम का,
हाँ यार, रूम फॉर
है ना?
इम्प्रूवमेंट तो है ऑब्वियसली, वो तो क्लियरली नज़र आ रहा है, और अगर आप पावर प्ले में 6 ओवरों में 33 रन बनाओगे और एक ही आपका आउट है, तो पूरी अब क्रिटिसाइज तो होगा आपके ऊपर, जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म होगा। अच्छा, राजेश कुमार साहब कह रहे हैं कि शोएब मलिक खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। नहीं जी, वो नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल अनाउंस हो गया है, उसमें शोएब मलिक कहीं पे भी नहीं है। नफीस खान साहब पूछ रहे हैं आमिर है या नहीं है। नहीं सर, आमिर बिल्कुल भी नहीं है, आमिर तो अभी तक
आमिर जी
रिटायरमेंट से
नहीं,
वापस ही नहीं आए, तो आमिर साहब बिल्कुल स्क्वाड में शामिल नहीं है। राजेश कुमार साहब कहते हैं मोहम्मद नवाज को मैं जब भी आउट होना बोलता हूँ तब तब वो चल जाते हैं। सर अब आप
बिल्कुल।
उल्टा बोलें तो शायद काम आ जाए हैं।
अच्छा, मजे की बात, इनकी इस बात से याद है, याद है कल हम जब पॉडकास्ट कर रहे थे तो यहाँ पे किसी हमारे वो फ्रेंड ने बोला था कि कल जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, लेकिन लेकिन पाकिस्तान हार जाएगा, कुछ उस तरह की बात की थी। तो आज जब मैं वो दोपहर को यही सोच रहा था कि यार देखो ऑपोजिट हो गया, शुक्र है।
ऑपोजिट हो
हालांकि
गया
मेरा माइंड भी उन्होंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया था इस बात को।
यार। ये इंपॉर्टेंट सवाल है हसन हारिस का, ब्रो आपका
क्या
शो
कह रहे
कितने बजे शुरू होता है इंडिया के टाइम अकॉर्डिंग? अब हसन भाई ये हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा कोशिश हम करते हैं कि
बिल्कुल
हम पाकिस्तानी टाइम के अराउंड 9 बजे रात के आ जाएं, लेकिन वो आपका टाइम आई थिंक 9:30 PM बनेगा, लेकिन आज हम जल्दी आ रहे थे तो उमेर का इंटरनेट कनेक्शन आपने अभी स्ट्रीम में भी देखा होगा थोड़ा सा वो मसला कर रहा है, काफ़ी लैग आ रहा है, तो कभी कभार इंटरनेट की वजह से ना हमें थोड़ा लेट करना पड़ता है, क्योंकि 9 के
हाँ
अराउंड ना काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, आपको पता ही है इंटरनेट का, और आजकल पाकिस्तान के हालात भी थोड़े पतले चल रहे हैं, तो
बिल्कुल।
कोशिश करेंगे कि 9 तक ही हम उसको
बाकी
रखें।
हाँ आई थिंक 9 बजे बेहतर टाइम है, अगर हमारे सब सिनेरियोस ठीक, इंटरनेट का जो हमारा इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। बाकी हसन भाई आप हमें उस पर भी फॉलो करें, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हम लोग वहां पे भी अपडेट वगैरह मतलब वो दे देंगे कि हम लोग किस टाइम आते हैं, रोज किस तरह करते हैं,
हाँ
तो
तो
वो भी एक
इंडियन
अच्छा और
टाइम
रहेगा।
आप समझिए 9:30 to 10 PM वाला बनेगा आई थिंक।
बिल्कुल। अच्छा
और
जलाल एक सवाल मेरे पास आ रहा है बड़ा, एक आप समझ लें मैं उस, वो सवाल ऐसा है कि मैं काफी सोच रहा था उसके बारे में ना
अच्छा जोर से
कि
आ
देखिए मेलबर्न में मैच है,
रहा
जोर से आ रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था,
है
सुने, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है मेलबर्न में, सही है? तो अगर लेट्स सपोज बारिश हो जाती है, ठीक
ओए
है,
होए होए होए
20 ओवरों की जगह गेम हो जाती है 12 ओवरों की, ठीक है, थोड़ा सा वो सोचते ना क्रिटिकली हो गया, 20 ओवरों की गेम की जगह 12 ओवरों की हो जाती है, तो फिर आपको क्या लगता है कि ज्यादा ज्यादा चांसेस पाकिस्तान के होंगे या इंडिया के होंगे?
खतरनाक सवाल किया यार, खतरनाक सवाल किया। आई
बिल्कुल
थिंक फिर अच्छा वैसे ये आपने जो सवाल किया है ना इस पे बारिश के, अगर आप मौसम देखो ना तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का मैच बिल्कुल वॉश आउट होने के चांसेस भी हैं। जो उस वेदर अपडेट आया ना, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। आपको तो पता नहीं आपने वो वेदर देखा था या नहीं देखा था, आपके दिमाग में क्लिक हो गया। लेकिन ये असल में बात चल रही है कि वॉश आउट होने के चांसेस हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के। लेकिन मुझे लगता है उमेर कि इंडिया के पास वो बैटिंग फायर है कि मैच छोटा होगा तो इंडिया ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। कि हमारे पास ना पावर हिटिंग का थोड़ा सा फुकदान नज़र आता है, ख़ास तौर पे बाबर और रिजवान तो बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएंगे उस सिनेरियो में। तो ये बात आपने बड़ी प्यारी की है, तो मैं तो इंडिया को फिर ज़्यादा चांस दूंगा। आप क्या कहते
हाँ
हो?
हाँ बिल्कुल। नहीं मेरा भी वोट इंडिया के साथ है, क्योंकि वही बात है, हमारा टॉप ऑर्डर जो है बाबर और रिजवान, तो वो अगर 5 ओवर भी खड़े रहे, 6 ओवर भी खड़े रहे, तो फिर वो स्कोर वगैरह थोड़ा कम बनेगा, तो इस वजह से इंडिया के साथ ही मेरा है ज्यादा वोट।
अच्छा इससे मुझे एक चीज़ और क्लिक की है, हमें वो भी वीडियोस बनानी चाहिए, व्हाट इफ कि ये होता, ये अगर हो तो फिर क्या हो। ये आपने व्हाट
बिल्कुल
इफ वाला
नहीं कर
सवाल
सकते,
किया
पाइपलाइन में डाल दें, अभी हमारी किसी चीज़
है।
पाइपलाइन में डली हुई, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये भी डाल दें।
राजेश कुमार साहब को डर लग रहा है भाई मोहम्मद नवाज से, कहते हैं मेरे को मोहम्मद नवाज से डर लग रहा है फिर इंडिया के खिलाफ ना चल जाए। यार अब हम तो पाकिस्तानी फैंस हैं, हम तो दुआ करेंगे चले, लेकिन अब मैं ये भी दुआ करता हूँ नवाज तक नौबत ही ना आए।
अच्छा राजेश भाई यही सीन हमारा होता है कोहली के साथ, जब कोहली फॉर्म में नहीं थे ना, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सबसे आगे थे, दुआ कर रहे थे कि यार कोहली फॉर्म में आए, तो
हाँ
जब पाकिस्तान के साथ मैच था, हम लोग वो वाले मोमेंट पे खाली कह रहे थे कि यार कोहली इस मैच पे ना चले, और उसी मैच पे चल गए। कमबैक मारती।
मोतीलाल ठाकुर साहब कुछ कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं शोएब मलिक का, शोएब मलिक बुड्ढा है आई थिंक, भूल जाओ फैमिली को, आगे की बात करो पाकिस्तानियों। यार वो वैसे फिट तो हैं अभी तक, बड़े ज़बरदस्त फिट हैं उनकी फिटनेस अभी वो, बल्कि वो भी खेले हैं उमेर नेशनल T20 कप भी खेले हैं, और अभी PGL में वो मेंटोरशिप भी कर रहे हैं,
मेंटोर भी
तो
बिल्कुल।
फिट तो हैं वो।
हाँ यार वो उन्होंने वही, जब उनसे सवाल किया गया कि आप रिटायरमेंट का क्या सोच रहे हैं, तो उस पे उन्होंने वही डायरेक्ट होके बोला कि भाई मैं अभी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, फिटनेस इशू नहीं है, तो फिर मैं किस तरह मतलब इस तरह सोचूं, मतलब इस तरह उनका
हाँ
मतलब था कहने का।
अच्छा हसन
तो
हारिस साहब, ये आपने हिंदी में सारा कमेंट लिखा है, तो ये मैं अब शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने कोई शरारत ना की हो, आप हैं शरारती आदमी, तो मैं वो शो नहीं कर रहा, क्या पता आपने कोई गाली गुली लिखी हो। इसको ज़रा इंग्लिश में ज़रा लिख दें या रोमन हिंदी में लिख दें तो फिर ज़्यादा पता चल जाएगा, रिस्क नहीं ले सकते भाई। इशफाक अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, उमैर भाई, आज हैदर नवाज ने
वालेकुम
मैच
अस्सलाम।
जिताया
हाँ
है जिसे बाबर आजम को बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा, बस पावर प्ले को अच्छा खेलने की जरूरत है, चाहे ओपनर ही बदलना पड़े। यार बड़ी प्यारी बात कर दी इशफाक भाई ने, हैं
शाग
कहते
भाई
हैं
आपने
कि
बात तो बड़ी
कॉन्फिडेंस
अच्छी
मिला
की
होगा
है,
बाबर को।
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है हमें, खुद यहाँ पे हम लोग खुद काफी कॉन्फिडेंट हो गए इस चीज पे, लेकिन वही बात है कि जो टॉप ऑर्डर है वो तो चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बाबर और रिजवान ही रहेंगे, तो ये थोड़ा सा एक सैड बात है हमारे लिए।
बिल्कुल जी, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिस तरह मैंने अभी ये पहली दफ़ा देखा है मोतीलाल ठाकुर साहब का कमेंट, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको कंटेंट अच्छा लगता है, नहीं भी लगता तो भी बता दें कमेंट करके, और
बिल्कुल
अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ है यार, सारे लिंक्स हैं। एक्सप्लोर करें, हमारी वेबसाइट भी है talkbeforewicket.com। अच्छा राजेश साहब भी कुछ कहते हैं, उमेर शाहीन शाह अफरीदी से बोल दो इंडिया का टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट नहीं करेगा, 6 ओवर तक नहीं करना भाई।
यार हमें भी ये वैसे जो शाहीन शाह अफरीदी की जो हमें एक्साइटमेंट है ना राजेश भाई, वो यही है कि पहले 6 ओवरों में उसने कुछ करना है। यार तो अब उसके उल्टा बोल रहे हैं बिल्कुल
राजेश भाई। अब आप अब यही बोल दे कि इंडिया पाकिस्तान खेले ही ना, इंडिया मैच ही जीते।
क्योंकि हमें पता है अगर वो 6 ओवर निकाल दिए ना इंडिया ने तो बस फिर इंडिया जीत गया,
फिर तो हमारी कुटाई हो जानी है बहुत।
वैसे जलाल एक और ख्याल मेरे माइंड में अभी आया है बिल्कुल, बल्कि आप बताएं, बल्कि जो देख रहे वो भी बताएं कि यार क्या कहते हैं आज मैच पे लाइव।
हाँ यार ये एक बात मैं भी सोच रहा था कि हम वॉच अलोंग वाला सीन करें इस मैच में पाकिस्तान इंडिया के। असल में मेरा उमेर टाइम का मसला है, मैं यूएस में बैठा हूँ, मेरे रात के 1 बजे मैच स्टार्ट होगा, आपकी दोपहर को 1 बजे होगा, मैं 12 घंटे का डिफरेंस है।
देखे पाकिस्तान इंडिया का मैच है और आप अपनी नींद को प्रायोरिटी देंगे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
नहीं नींद को तो मैं मैच तो देखूंगा लेकिन आई डोंट नो कि मेरा एनर्जी लेवल क्या होगा, लेकिन इस बात को जरूर हमें ऑडियंस भी बताए कि हम वॉच अलोंग करें तो क्या आप लोग हमारा साथ देंगे, ताकि हम सारे मिल के बैठ के मैच देखें और आप लोगों के कमेंट्स भी बीच में शामिल करें और इंडिया पाकिस्तान की जो ऑडियंस होगी वो भी जुड़ी होगी, तो बड़ा मजा आएगा। वैसे ये उमेर साहब
मजा तो बहुत आ रहा है, बस दुआ करें मैच अच्छा हो, मैच ऐसा वन साइडेड ना हो, बेशक इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते लेकिन वही बात है लास्ट बॉल तक वो गेम जानी चाहिए।
वॉच लॉन्ग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार अगर इंडिया वन साइडेड जीत गया तो। फिर मैं जल्दी सोने के लिए चला जाऊंगा भाई।
देखिए मेरे पास तो अच्छा बहाना है, मेरे पास तो अच्छा बहाना है जलाल, मैं बोल दूंगा मेरा इंटरनेट खराब हो गया आप
ये भी है वैसे दोपहर के टाइम क्या पता तेरा इंटरनेट ही ना चल रहा हो। अच्छा ये तो SS98 साथ आपकी हमने ब्रेकिंग न्यूज चला दी, ये जसप्रीत बुमराह वाली मोहम्मद शामी का। अच्छा क्रिकेट फीवर्स आप भी आगे अस्सलामुअलैकुम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम।
राजेश कुमार कह रहे हैं शामी अच्छा है, तो वो सेटिस्फाई लग रहे हैं कि भाई यार हारिस साहब आप हसन हारिस साहब आप हिंदी में कमेंट कर रहे हैं यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है आपसे, ये कोई गलत काम ना आप कोई बीच में कमेंट लिख रहे हो भाई। अच्छा क्रिकेट फीवर साहब कहते हैं आज जल्दी आ गए लाइव आप लोग, यार हम कोशिश तो रोजाना ही करते हैं थोड़ी जल्दी आने की लेकिन हमारा मुझसे बताया इंटरनेट कभी जो है ना मसला कर देता है, तो अभी कोशिश करेंगे हम कि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब 9 से 10 के दरमियान हम आ जाया करें।
बिल्कुल अच्छा इनका कमेंट जो हिंदी में ना जलाल हिंदी में वो ये कह रहे हैप्पी इन द फाइनल स्क्वाड, मतलब कि ये शायद खुश हो रहे हैं ना वो कि उसकी जो इंक्लूजन हुई है शमी की उस पे इन्होंने ये बोला है।
अच्छा खुश है। अच्छा क्रिकेट फीवर साहब कहते हैं आई हर्ड 60% चांसेस हैं रेन के फिलहाल। हाँ यार अभी तक तो यही आ रहा है लेकिन मैंने ये सुना है कि मेलबर्न में वेदर बहुत तेजी से तब्दील होता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, लेकिन अगर बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा आईसीसी के लिए बड़ा होगा उमेर रेवेन्यू के सूरत में कि अगर मैच वॉश आउट हो गया। वैसे तो टिकट सोल्ड ही है सारी लेकिन स्टिल स्पॉन्सर्स बेचारों को बड़ा हिट हो जाएगा
यार। यार ना ही हो बारिश यार, बड़ी एक्साइटमेंट है इस मैच की।
ये भी
देखे जलाल, ये भी देखे यहाँ पे बीच में पैसा आया है तो आईसीसी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस करवाता है,
वो भी शुरू में ही करा देता
ना ही करवाता
और जो भी हारे उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है बेचारी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है टीम इंडिया या पाकिस्तान। हाँ, जो भी हारे। राजेश कुमार साहब कह रहे हैं ऐसा होता तब मजा आ जाता, आई थिंक ये वो उमेर हमारी उसके वॉच लॉन्ग वाले सीन की बात कर रहे हैं आई होप।
अच्छा सही चले यार अच्छा। हसन हारिस कह रहे हैं जरूर फॉलो करेंगे ट्विटर इंस्टाग्राम पे आपको इंशाल्लाह। थैंक यू हसन भाई। अच्छा जलाल मैं यहाँ पे एक बात करने लगा था क्योंकि थी के क्या थी, चले आगे चले मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा ये हसन हारिस साहब ट्विटर पे हमारे दो अकाउंट हैं, एक टॉक बिफोर विकेट टॉक बी विकेट के यूजर नेम हैंडल से और एक टॉक बी फोर विकेट के यूजर नेम हैंडल से, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। अभी शायद हम सिर्फ टॉक बी विकेट वाले को हमने किया, उसका टॉक बिफोर वाले का भी लिंक मैं शेयर करना पड़ेगा मैं। अच्छा ये राजेश साहब व्हाट इफ की एक और बात कर रहे हैं भाई, व्हाट इफ वाली जहां बात है, इन्होंने कहा कि भाई सुपर ओवर होता पाकिस्तान और इंडिया तो फिर मजा आता भाई।
यार ये तो मजा हमें ना आता ना, आपको
हार्ट अटैक ही
याद होगा
होता
जो
भाई
पहले
फिर।
हुआ एक दफा सुपर ओवर। सही बात है यार। अच्छा मजे की बात जलाल, जो पाकिस्तान इंडिया का सुपर ओवर मैच गया था याद है आपको, ये T20 में ही गया था पहले, 2009 में था, 7 में था उसमें,
उस टाइम बॉल आउट
तो
वाला
उसमें
सीन था ना।
पाकिस्तान का कैसा था। हाँ उसपे बोल्ड आउट वाला सीन था, तो वो आपको याद है कैसा हुआ था
वो तो वन साइडेड ही हुआ था, हम में से
उसमें।
किसी की लगी नहीं थी और इंडिया में से सबकी लग गई थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके आए हुए थे। और उसमें जो जबरदस्त चीज थी वो ये थी कि इतनी प्रैक्टिस की हुई थी कि धोनी जो है वो एज अ विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के पीछे बैठे हुए थे, मतलब बिल्कुल विकेट के स्ट्रेट बैठे हुए थे, तो बॉलर को वो निशाना लेना आसान हो रहा था, वो एंगल ये बन रहा था। नॉर्मली विकेट कीपर थोड़ा सा ऑफ साइड पे खड़ा होता है ना, तो पाकिस्तानियों का वही उसी एक्शन से आ रहे थे। और रॉबिन उथप्पा वगैरह ने आई थिंक जो नॉन रेगुलर बॉलर्स थे उन्होंने बॉल आउट किया था, तो
बिल्कुल
ये भी बात है, तैयारी नहीं थी हमारी।
बिल्कुल।
अच्छा व्हाट इफ का एक और
अच्छा
सवाल
लग
है,
नेता,
राजेश कुमार आपसे पूछ
लग
रहे हैं
नेता
उमेर के
पूछ
सुपर
रहे।
ओवर में पाकिस्तान से कौन जा सकता है बैटिंग करने अगर सुपर ओवर हो तो।
अगर सुपर ओवर हो तो यार पाकिस्तान की तरफ से कौन जा सकता है, आसिफ और नवाज।
हाँ बात तो ठीक है, लेकिन वही बात है ना, वो उतना वाला कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे हिटर्स पे ऊपर। आसिफ तो चलो ठीक है, लेकिन आसिफ का भी पता नहीं है पहली गेंद पे ही आउट हो जाए। सही है, तो
यार हाँ उसका पता नहीं है, देखें फिर उसके बाद एक और बंदा अगर आए तो शादाब आ जाए।
शदाब आ सकता है, फखर अगर हो तो शायद फखर आ सकता है अगर टीम में होता है तो उसी बारे में नाग नेता साहब पूछ रहे हैं, आई थिंक ये भी ट्विटर वाले भाई हैं हमारे शायद। डू यू थिंक फखर विल रिप्लेस शान और एनी अदर प्लेयर इन द प्लेइंग 11? क्या कहते हैं उमेर?
अदर प्लान इन प्लेइंग 11 यार, इसमें फखर वैसे कर लेगा रिप्लेस, जहां तक मुझे लग रहा है ना, शान मसूद की जगह वन डाउन आ जाएगा वो फखर जमान। आपको क्या लगता
यार लग तो यही रहा है, फिलहाल तो यही लग रहा है। अच्छा अब इस पे बात अच्छी होगी, टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम वो इंडिया वाला शामी वाली ट्वीट से ट्वीट तो नहीं, वो जो शामी वाली न्यूज़ है उससे हम इधर उधर हो गए। मैं आपसे ये सवाल कर रहा था,
है?
वर्ल्ड कप स्क्वाड तो हमने अनाउंस कर दिया, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ यही एक तब्दीली आई है कि उस्मान कादर रिजर्व में चले गए और रिजर्व से फखर जमान मेन स्क्वाड में चले गए। अब उमेर साहब टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो आप और मैं हम बड़ा कहते हैं कि जी फोर्थ फोर सीमर हमें खिलाने चाहिए, यानी मोहम्मद वसीम को एज अ फोर्थ सीमर खेलना चाहिए टीम में। अब फोर्थ सीमर अगर खेलते हैं तो अब फिर आपको एक बैटर निकालना पड़ेगा टीम से, तो वो कौन सा बैटर होगा जिस पे आप छुरी फेरोगे?
यार आसिफ हो सकता है, या आसिफ के अलावा आपका टॉप से वन डाउन शान हो सकता है।
अच्छा अब ये ट्रिकी मामला हो
उसमें
गया
यह
ना,
है कि
अगर शान निकालते हो फिर फखर का क्या करोगे? फखर को कैसे, फखर तो फिर खेलेगा नहीं, ये भी मसला है ना, ट्रिकी मामला है सर।
ट्रिकी है। आप क्या कहते हैं वैसे, आपका क्या माइंड है कि अगर लेट्स सपोज फोर्थ सीमर खिलाना है तो किसको किसकी जगह खिलाएं?
यार देखो मोहम्मद वसीम ना डेथ में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन मुझे और आइडियली मैं तो यही चाहता हूं कि पहले तो मैं हैदर का सोच रहा था, लेकिन अब हैदर ने इतनी अच्छी बैटिंग कर दी है, तो शान और आसिफ में से ये एक
हाँ
बनता है। और आसिफ क्योंकि प्रॉपर T20 प्लेयर है और ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर है, तो मैं शान को ही करूँगा। अब शान को अगर आप बायर करते हो तो मसला ये हो जाता है कि फिर आपके तीसरे पे कौन खेलेगा,
टॉप ऑर्डर,
तो तीसरे पे फिर
हाँ
यही है कि
बिल्कुल
आप
तीसरे
या
पे।
हैदर या शादाब को ऊपर प्रमोट करो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगता है टेस्टिंग टीम है
काफी
ना।
रिस्क हो जाएगी, और बाबर आजम नहीं लेगा इतनी रिस्क है ना।
फिर इसका मतलब मोहम्मद वसीम बेंच पे बैठेगा। अच्छा
हाँ बस बस आप ये तो अगर शाहीन साहब शाहीन की कोई इंजरी शिंजरी ना निकल है दोबारा।
ये अब शाहीन के सवाल कर दिया ना। SS98 साहब कहते हैं, अकॉर्डिंग टू यू बोथ हु विल बी मोर इफेक्टिव इन द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, शामी और शाहीन, बोथ कमिंग फ्रॉम नॉट प्लेइंग एनी कंपेटिटिव क्रिकेट फॉर 3-4 months। अच्छा सवाल है यार ये, क्या कहते हो उमर?
बहुत अच्छा सवाल है यार। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं आपको अगर बताऊं ना दिल की, मुझे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है शाहीन से कि वो आके विकेट ले लेंगे एकदम, तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है शाहीन से। और लाइक वाइज शामी से भी यही है कि उनको एक बीच में रेस्ट मिला है, कोविड से रिकवरी की है, तो उस तरह इम्पेक्ट नहीं डाल सकेंगे जिस तरह ये पहले डालते आए। तो नॉर्मली है, मतलब उस तरह नहीं। बस ये होगा कि स्ट्राइक रेट वगैरह थोड़ा इनका कम हो जाएगा आपके बॉलर्स पे, वो थोड़ा उस पर होगा। आप क्या कहते हैं?
यार नहीं, मेरा भी, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि एक्सपेक्टेशन दोनों बॉलरों से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों रिटर्न पे आ रहे हैं और इतने मैचेस नहीं खेले। लेकिन ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि शाहीन का एक डर है, जिस तरह फ़खर की आपने बात की ना, फ़खर और शान की जब आप बात करते हो तो फ़खर परफॉर्म करे ना करे उसकी एक दहशत रहती है। तो आई थिंक शामी और शाहीन में अगर आप कंपेरिजन करो तो शाहीन का एक वो फियर फैक्टर ज़्यादा है शाहीन का, तो इस वजह से आई विल गो विद शाहीन।
जी, सही सही सही। अच्छा, क्रिकेट फीवर पूछ रहे हैं, वॉच अलोंग वार्म अप मैचेस में ट्राई कर ले पहले। यार
ये भी अच्छा
वैसे अच्छा
सजेशन
आइडिया
है,
दिया क्रिकेट फीवर, नहीं है
अच्छा
ना, लेकिन
सजेशन
इसके
है।
लिए हमें बड़ा ज्यादा प्री वर्क करना है यार। मेरे ख्याल में इतना टाइम होगा क्योंकि हम लोगों ने स्कोर कार्ड भी दिखाना है, काफी चीज। चले इस पे हम लोग सोचते हैं क्रिकेट फीवर भाई,
टेक्निकल
फिर आपसे
चीजें पहले
अगली
सॉर्ट आउट
मीटिंग्स
करनी
करते हैं।
पड़ेंगी भाई। अच्छा
बिल्कुल।
अशफाक अली भाई कहते हैं, उमर भाई आप मुझे भूल गए हो, वो मैं ही था जिसे जुमे के दिन डर रहा था, मगर वक्त पता नहीं बलवन होता है
जिसके
जिसकी
हर शेय गुलाम
हर
होता
शे
है
गुलाम होते हैं। हाँ
यार। इशफाक भाई, मुझे तो वैसे समझ नहीं आई आपकी इस बात की जलाल, आपको आई है
नहीं, ये इन्होंने यही बोला है कि वो जो आप
कि
बात कर रहे थे ना कि एक भाई हमारे कह रहे थे कि जुमे के दिन पाकिस्तान के लिए बुरा साबित होता है, पाकिस्तान मैच जीत जाता है, तो वो कह रहे हैं
हाँ
कि ये
हाँ
मैं ही था
अच्छा
जो
सही
वो
सही
बोल
सही
रहा था।
सही 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 अच्छा ये हुई बिल्कुल। तो देख लें आपकी वो बात ने मेरा आज पूरा वो क्या कहते हैं, मैं सोच रहा था इस बात पे कि यार देखें चले अच्छा हो गया जीत के पाकिस्तान। अच्छा हसन हारिस,
सेंटी हो गए, सेंटी हो गए
आवाज आ
भाई।
रही है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शो कर देते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि ब्रो मैं एक मुस्लिम हूँ, होके गाली देना मुसलमानों का काम नहीं। नहीं, बिल्कुल यार,
नहीं, वो उस सेंस में नहीं कहा था
उस सेंस
बिल्कुल।
में बिल्कुल नहीं कहा
हाँ
था
ये
वो।
तो है, बस उस सेंस में नहीं कहा
आप थोड़ी पीछे
था।
शरारत करते रहते हो ना, तो मैंने कहा ये ना अब हिंदी में, मुझे क्या पता आप क्या बोल रहे हो वो इसलिए
नहीं,
था,
वो ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल
सेंटी
वैसे
नहीं हो भाई,
बोल रहा
सेंटी
था।
नहीं
हाँ
हो। शाहीन का क्या है? शाहीन बॉलिंग करा कर आता है, नहीं
बात अच्छी की है वैसे इन्होंने,
बुकिंग करा कर आता है कि
बुकिंग
इंडिया के
करवा
प्लेयर को
कर पवेलियन
पावर प्ले के अंदर पवेलियन में बिठाना है
बात वैसे अच्छी की यार बिल्कुल यार। ये वही एक टाइम होता था इंडिया के भी, हम सहवाग से डरते थे, याद है आपको? सहवाग भी आते थे शुरू में, वो भी बड़ी फेंटी लगाते थे पाकिस्तान की।
अच्छा अब उमर इसमें एक बात मैं ये देख रहा था, आई थिंक गौतम गंभीर की बात थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने एक सजेशन ये दिया था कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउट शाहीन, कि आप शाहीन के एक फियर फैक्टर जेन में रखो कि जी इन स्विंग बॉल आएगी, लेफ्ट आर्मर है, और हम सबको पता है इंडिया का टॉप ऑर्डर लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, ये अब कोई ढकी छुपी बात है नहीं। तो वो कह रहे थे आप अटैक करो शाहीन पे, ठीक है, और वही एक सोल्यूशन है कि आप अंडर प्रेशर ला सकते हो उसको, फिर वो अपनी लाइन और लेंथ चेंज करेगा। अदरवाइज अगर आप सर्वाइविंग मोड में रहे तो वो अपनी लाइन और लेंथ पकड़ के रखेगा और आपको मसले होंगे फिर। क्या कहते हो इस सजेशन पर?
यार इस पे मैं ये बोलूंगा कि पिच की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर लेट्स सपोज पिच आपकी बहुत ही बॉलर को फेवर कर रही हो तो फिर वो शायद उस तरह स्ट्राइक ना ले, अगर पिच बैट्समैन को ज्यादा फेवर कर रही हो फिर ले ले रिस्क। वो बात
यार अब
आपकी ठीक है कि
स्विंग भी
अगर
मैटर
शुरू में ही
करती है
पिच को
ना,
थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे,
कि
हाँ
शाहीन
स्विंग
की
भी
स्विंग
मैटर
होती है
करती
कि नहीं
है,
होती
लेकिन
है।
मैं उस सेंस में कह रहा था यार स्विंग तो उसकी पता नहीं प्रैक्टिस तो इतनी कर रहा है, और होनी चाहिए स्विंग, उसी का तो इंतजार है। लेकिन वही बात है जलाल, मैं इस पे ये बोलूंगा आपकी बात पे कि पिच कंडीशंस को मैं देखूंगा कि अगर लेट्स सपोज अगर वो कि अगर पिच काफी बॉलिंग पिच है तो फिर वहां पे थोड़ा आराम से खेल ले और उसके बाद फिर स्ट्राइक ले ले, क्या कहते हो आप?
बिल्कुल नहीं, बात ठीक है,
आवाज आ
थोड़ा
रही है मेरी आपको?
हाँ हाँ आ रही है, बात ठीक है। इशफाक अली साहब कह रहे हैं, हसन आरिस भाई ये कह रहे हैं कि शो खत्म करने से पहले पाकिस्तान का T20 स्कोर जरूर बता दे। सर वो मैंने पहले बता दिया है, अगर आप कहते हो मैं दोबारा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। बाबर आजम
बता
कैप्टन
दें
है,
बता दें, जल्दी से
शादाब
बता दें।
खान वाइस कैप्टन है, आसिफ अली हैं, फखर जमान है, हैदर अली हैं, हारिस रऊफ हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह और शान मसूद। ये 15 का मेन स्क्वाड है। ट्रैवलिंग रिजर्व साथ मोहम्मद हारिस हैं बैकअप विकेट कीपर, शाहनवाज दहानी बैकअप सीमर, उस्मान कादिर बैकअप स्पिन बॉलर। तो ये भाई स्क्वाड है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का।
बिल्कुल
नेता साहब क्या कहते हैं कि इफ वो सीमर्स आर इन प्लान दे वुड हैव ट्राइड इट। यार नेता साहब रीज़न पता फोर सीमर की क्यों नहीं ट्राई की? क्योंकि बाकी पेसर्स ना अनफिट हुए हुए थे पाकिस्तान के, इवन इंग्लैंड वाले मैचेस में भी ना नसीम हसनैन अनफिट हो चुके थे। फिर आप आमिर जमाल एक प्लेयर था उसको भी ट्राई आउट किया था इन्होंने एक दो मैचों में, और अभी भी सिचुएशन ये थी कि
लेकिन
नसीम और हसनैन न्यूजीलैंड में आके फिट हुए
लास्ट
हैं।
वाले मैच में,
हाँ लास्ट वाले मैच में खिला सकते थे, फाइनल
नहीं
में।
लास्ट में खिला सकते थे इसे, वो बांग्लादेश वाले में भी। लेकिन जलाल मुझे लगता है माइंडसेट ही नहीं है यार, मतलब वो एक सोच ही नहीं जा रही उस तरफ।
यार मुश्किल भी है ना, मुश्किल भी है। देखो टीम कॉम्बिनेशन काफ़ी, जैसे अभी हमने जिक्र किया है, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप खिलाते हो फोर्थ सीमर तो फिर आपका काफ़ी कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, फिर एक बैटर कम है और पहले ही आप बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, तो मुश्किल
बिल्कुल
डिसीजन तो है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर ले लेना तो फिर बॉलिंग में बड़ा बैलेंस आ जाएगा।
यार, बहुत ज्यादा, और खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम में देख ले कितने वहां पे फास्ट बॉलर्स हैं आप, और इंडिया के भी देख ले, इंडिया भी आई थिंक 4 के साथ तो जाएगा।
चार तो मस्त हैं भाई बैलेंस के लिए ना पेसर, क्योंकि एक ने एक दिन एक पेसर को तो पढ़नी पड़नी है।
हाँ पढ़नी पड़नी है बिल्कुल। तो
राजेश
ये एक
कुम
मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक लॉस हो रहा है।
राजेश कुमार साहब कह रहे हैं मेरे को लग रहा है कि शाहीन विकेट लेगा। भाई आप अभी डर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है ज्यादा आपने
क्या
ज्यादा खौफ बनाया हुआ है भाई। इंडिया की टीम जो है ना वो हैवी टीम है भाई, इतना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा जलाल, यहाँ पे एक सवाल है आपसे मेरा
सवाल से एक
यार,
मिनट
एक
पहले
सुनिए एक सुनिए।
कमेंट कमेंट बड़ा मजे का,
हाँ
गौतम
कौन सा
गंभीर
इसका?
भी बेचैन रहता है इंडिया और पाकिस्तान मैच में, दिल धड़क जाता है उसका, हम फील क्या क्या हो हम नहीं। बात ठीक है
उसके
यार।
बारे में क्या है? यार वहां पे गौतम गंभीर होते हैं, पाकिस्तान में शोएब अख्तर होते हैं,
हाँ
और चलता रहता है इनका। अच्छा जलाल एक सवाल आया है बड़ा, मैंने अभी सामने ट्विटर खोला है तो एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिक अच्छा सवाल है उसपे, कि देखिए आपका 19th ओवर आप किससे कराएं, आखिरी ओवर किससे कराएंगे 20वां ओवर? उसमें मैं आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं दूंगा, आपको मैं 3 ऑप्शंस दूंगा, सही है? बल्कि आप लोग भी बताएं जो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। पहला अर्शदीप है, दूसरा हारिस रऊफ है, तीसरे पे आपका आ जाता है स्टार्क, चलिए फोर्थ ऑप्शन भी ले लें, फोर्थ ऑप्शन मुझे पसंद है ट्रेंट बोल्ट। आखिरी ओवर किससे
मतलब
कराएंगे
डेथ
अगर
ओवर की बात कर रहे
सेकंड इनिंग
हो
चीज को?
आप? नॉर्मली वैसे हारिस और रशदी मेरा ख्याल है 19वां ओवर करवाते हैं, लेकिन स्टिल अगर हम डेथ ओवर्स की बात करें तो इस टाइम के ऊपर आई थिंक अर्शदीप और हारिस रऊफ ही टॉप पर हैं, तो मैं आई वुड गो विद हारिस रऊफ बेस्ड ऑन द स्टैट्स और पेस, क्योंकि लास्ट 2 सालों के अंदर हारिस रऊफ के स्टैट्स एज अ डेथ बॉलर सबसे ऊपर है। सेकेंड पे अर्शदीप है,
बिल्कुल।
थर्ड पे स्टार्क है, फोर्थ पे बोल्ट है। ये मेरा ये रैंकिंग हुई, आपकी क्या रैंकिंग है?
यार मेरा फर्स्ट में हारिस है, सेकंड में अर्शदीप है, थर्ड पे बोल्ट है, फोर्थ पे स्टार्क है।
अच्छा, आप बोल्ड को ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा
बोल्ट का आज का ओवर भी बड़ा अच्छा था यार, आज का ओवर भी उसका सही था, बस वो एज लग गया, चौका हो गया। लाइन वगैरह सही थी सब चीजें।
हाँ नहीं, बोल्ड तो बॉलर तो जबरदस्त है यार। नेता साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, कहते हैं कि एक्चुअली मोस्ट राइट हैंडेड बैट्समैन स्ट्रगल अगेंस्ट इन स्विंगिंग बॉल फ्रॉम लेफ्ट हैंडर्स, सैड पार्ट इज टॉप 3 ऑफ इंडिया आर राइट हैंडर्स विच मेक्स देम मोर वल्नरेबल। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन इंडिया का यार मैं फिर ये बोलूंगा थोड़ा सा हिस्ट्री भी है ना। अब देखो पाकिस्तान क्या भी दोनों राइटी हैं, लेकिन हमने बाबर और रिजवान को इस तरह नहीं देखा कि वो लेफ्ट हैंडेड पेसर्स के आगे स्ट्रगल करें। और बाकी भी दुनिया में आप देखो तो उस तरीके से स्टैंड आउट नहीं करता, जैसा इंग्लैंड के भी राइटी ही दोनों अक्सर रहते हैं ओपनर्स। तो इंडिया का ना काफ़ी हिस्ट्री रही है, वो जुनेद खान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान और फिर मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, अभी वेन पार्नल वगैरह। लेकिन ये आप बात ठीक कर रहे हो कि राइट ही जनरली ज़्यादा स्ट्रगल करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा आपका ख्याल में चाहिए, ऊपर हो गया, कमेंट थोड़े पीछे रह गया हूँ मैं, ज़रा कमेंट देख लें कौन कोई मिस तो नहीं हो गया। हुसैन खान कहते हैं वाई डिड नॉट कॉल इमाद वसीम। यार वैलिड आर्गुमेंट है, वैलिड आर्गुमेंट है,
ठीक
हम काफी इस पे बात कर चुके हुए हैं कि इमाद वसीम आ सकते थे स्क्वाड में, उस्मान कादिर की जगह पे तो एटलीस्ट आ सकते थे, बट शायद उनका
आ
डिसिप्लिन
सकते
इशू
हैं।
है।
हाँ कुछ कह सकते हैं। इवन वो मोहम्मद वसीम से भी जब पूछा गया इनके बारे में तो इन्होंने उस बात का कोई आंसर ही नहीं किया, तो कुछ ऐसी बात ही होगी। लेकिन यार इस पे जलाल मैं वही बात है आप वाली कि अगर ऐसी कोई बात हो ना कि फिर पीसीबी को फ्रंट एंड पे आके मतलब इस तरह बोल देना चाहिए कि इस तरह की बातें मतलब जो कर रहा है वो इस वजह से नहीं है, ताकि ये बाकी प्लेयर्स के लिए भी डेटरेंस बन जाए, वो लोग फिर आगे से ऐसा ना करें।
हाँ नहीं, ये बात हम काफ़ी डिटेल में पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं कि अगर कोई डिसिप्लिन इशू है तो वो क्लियरली बता देना फिर, ताकि हम भी चुप हो जाएं। क्रिकेट 360 कहते हैं आई थिंक फखर जमान ओपन एंड बाबर वन डाउन T20 वर्ल्ड कप। भाई ये अब वर्ल्ड कप के बाद ही होगा, ये बाबर और
पॉसिबल ही
रिजवान
नहीं
हटने में नहीं आ रहे भाई, ये कहते हैं हम बस हम ही
है।
ओपन करेंगे, विच इज़
ऐसा
ठीक
ही है।
है। नेता साहब कहते हैं टू प्ले फोर पेसेस यू नीड डेफिनेटली अ पेस ऑलराउंडर। यार वसीम ना
हाँ बिल्कुल
एज
वही
एन
बात कह
ऑलराउंडर
रहा
ही
हूँ।
सिलेक्ट हुआ है, आई डोंट नो कि आपने वसीम की बैटिंग उसका देखी है। फिर बीच में एक केस ये भी था कि आमिर जमाल एक ऑलराउंडर था जिसको हमने इंग्लैंड वाले सीरीज में भी खिलाया था, तो कुछ लोग बातें कर रहे थे शायद कि खुशदिल की जगह पे आमिर जमाल स्क्वाड में आ जाए शायद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब वसीम बैटिंग में इतना टेस्ट नहीं हुआ उमैर का, मैंने कहा वसीम की बैटिंग अभी इतनी टेस्टेड नहीं है ना कि हम उस पर एज अ बैटर रिलाय कर सकें।
हाँ बिल्कुल फिर
क्रिकेट 360
नहीं उस तरह या उस तरह रिस्क ले सकते हैं।
हाँ नहीं ठीक है। अच्छा क्रिकेट 360 कहते हैं आपके ख्याल में पाक टीम कितने फास्ट बॉलर खेलेगा एक मैच में। यार अभी तो तीन ही नजर आ रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं किसी तरीके से चार खेल लें तो
तीन
ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वुडू पाक, वुडू पाक क्या कहते
बस यार
हैं।
मेरा ये है कि ये इफ्ती से भी ओवर कराए जलाल, इफ्ती का भी ओवर लाजमी होने चाहिए पता है, क्योंकि इफ्ती का ये विकेट्स नहीं लेता लेकिन ना उसकी डॉट बॉल्स हो जाती हैं और इकोनॉमी कम होती है, तो वो एक एज मिल सकता है। जैसा आज के मैच में भी हमने देखा कि शादाब और नवाज को पड़ रहा था, अगला ओवर इफ्ती से करा दिया, तो इस तरह के वो इफ्ती के एक दो ओवर और हो जाए ना सही है सीन।
हाँ शदाब को पड़ी, लेकिन शदाब ने बुरी बॉलिंग नहीं कराई, शदाब ठीक बॉलिंग करा गया एंड में, केन विलियमसन का भी सही टाइम पे विकेट मिल गई उसको। वुडू पाक कहते हैं इंडिया को शाहीन डराया, नसीम शाह इंडिया पर हावी हो गया। ओ, तेरी कमेंट ही निकल गया। अच्छा अब तो यहाँ दोनों बॉलर हैं, क्या होगा अब, ऐसा नहीं हो कि 10 ओवर में ऑल आउट इंडिया हो जाए। मुश्किल है सर, देखो दूसरे मैच में नसीम को मारा भी तो था काफ़ी इंडिया ने, तो जो एशिया कप का दूसरा मैच था उसमें केएल राहुल और रोहित शर्मा ने फेंटी भी लगाई थी। अच्छा जी नेता साहब क्या कहते हैं हारिस राव प्रॉबली द बेस्ट डेथ बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बिल्कुल सर, स्टैट्स तो यही बताते हैं और वो काफी कंसिस्टेंटली कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गैप आया हो ज्यादा। एक आध मैच में तो ऑब्वियसली मार पड़ी जाती है।
मतलब अब वो एक तरह से बैक बोन है, अब वो एक तरह से बैक बोन बना हुआ है पाकिस्तान
बिल्कुल
के, खास तौर पे डेथ ओवर्स में।
हाँ, हसन आरिस कहते हैं 2023 ODI वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है, बाबर आजम इंडिया की सरजमीन पर पहली बार खेलने उतरेंगे। मुझे उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है, मैं बाबर आजम को देखना जरूर आऊंगा। घोड़े यार ये तो बात बाकी, बड़ा फिट हो
क्या
जाएगा
बात
सीन।
है, क्या बात है।
आई थिंक
अच्छा
अगले
आज एक और खबर आई है यार, एक और खबर आ जाइए, एशिया के वो जो इंडिया है वो आएगी पाकिस्तान
एशिया कप के लिए ना
एशिया कप के लिए। हाँ ये खबर सही है, मैं
आएगी,
हालांकि
नहीं
डाउट
बोला
में
उन्होंने,
था
बोला
बट
है कि
देख।
बीसीसीआई इज रेडी बट फाइनल जो है वो वर्डिक्ट गवर्नमेंट के अप्रूवल पे डिपेंड करता है। तो वही जो उनका नॉर्मल स्टांस रहा है वही उनकी बात है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं ये एशिया कप होना
यार
भी है
जला
पाकिस्तान में कि नहीं।
आप वो वही बात है, जब हम स्ट्रीम स्टार्ट करने लगे थे उससे पहले आप जो मुझे बता रहे थे तो मेरा मूड ऑफ कर दिया था थोड़ा।
वही ना, अभी जो फाइनेंशियल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, मुश्किल ही लग रहा है भाई।
काफी डाउनर है, काफी डाउनर है।
क्रिकेट फीवर कह रहे हैं, नाउ दैट फखर जमान इज इन प्लेइंग 11, डू यू एक्सपेक्ट हिम टू रिप्लेस शान मसूद इन 11, इफ नॉट इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग शान मसूद फ्रॉम? यार फखर शान की जगह ही आ सकते हैं अगर आएंगे तो, और तो कोई जगह नहीं नजर आ रही।
नहीं बनती
हाँ आप स्क्वाड की बात करो, प्लेइंग 11 की नहीं बात करो, ठीक है समझ आ गई थी हमें। अच्छा अशफाक अली साहब कहते हैं, उमैर शाहीन आफरीदी काफी वक्त के बाद सीधे इंडिया के खिलाफ कमबैक कर रहा है, अगर शाहीन आफरीदी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो बाबर को घबराना नहीं चाहिए, वरना इंडिया मैच में 100% आगे होगी। बात ठीक है सर,
यार। ये
बिल्कुल
बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है, पता है बहुत अच्छी बात की
बिल्कुल,
है
बात
ये।
जेन्युइन
काफी
बात है।
ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी शाहीन शाह से, और बिल्कुल सही क्या है कि अगर वो शाहीन नहीं वहां पे परफॉर्म करता तो एकदम घबराए नहीं। अच्छा यार जलाल, इस पे एक और याद आया, वो याद है आपको जो दूसरा मैच हुआ था एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का, उसमें वही जो अभी आप माइंडसेट की बात नहीं कर रहे थे कि एग्रेसिव जाना चाहिए, उस पे वो गए एग्रेसिव गए थे, लेकिन वहां पे बाबर ने क्विक लिया था डिसीजन स्पिनर को लाने का,
हाँ
है ना,
नवाज को
वो एक
ऊपर ले
अच्छा
आए थे, आई थिंक
डिसीजन।
नवाज ने अच्छा ओवर करा दिया था,
हाँ
दायरे में
वो एक
शायद
अच्छा
नवाज को
उन्होंने
ले आए थे।
डिसीजन लिया था, बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा SS98 साहब कहते हैं कि कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन October 15, रोहित एंड बाबर विल फेस द मीडिया बिफोर द बिग डे। बिल्कुल, अभी एक वो बड़ी अच्छा एक पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने चैनल पे भी लगाया है कि विलियमसन और बाबर एक ही फ्लाइट पे, पहले उन्होंने ड्राइव की है एयरपोर्ट की तरफ और फिर वो
हाँ
एक ही साथ आई थिंक फ्लाइट पर जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा कॉन्टेंट बनाया वो।
गए हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अगले दिन जा रही है बाकी टीम, मतलब कि कल जा रहे हैं बाकी और आज ये लोग निकल गए।
हाँ अच्छा हसन आदिस कहते हैं, गौतम गंभीर बेचैन रहता है और आकाश चोपड़ा और विक्रांत गुप्ता बाबर आजम के फैन है। बिल्कुल सर बात ठीक है।
वैसे
इरफान
बाबर आजम का फैन होना तो बनता भी है वैसे, हसन भाई क्या कहते हैं, जो क्लास उसने जो शो की हुई है टेक्निक वाइज, अगर आप T20 को ना देखें वैसे, अगर आप उसकी देखें टेक्निक वगैरह स्टैट्स देखें,
T20 में भी
मेरे
भाई
ख्याल
उसकी
में बहुत कम ही
परफॉर्मेंस
लोग
तो
होंगे।
एक्सेप्शनल ही है, वो स्ट्राइक रेट का थोड़ा बहुत इश्यू तो है इसमें तो कोई डाउट नहीं, वैसे मैचेस तो उसने बहुत ही जिताए हैं T20 में भी।
हाँ बहुत जिताए। हाँ नहीं वैसे भी अगर उसका देखा जाए उसके फैन तो होने चाहिए, नासिर हुसैन उसके बहुत बड़े फैन है, उसकी बड़ी तारीफ की, उन्होंने तो प्रॉपर उसकी वो डॉक्यूमेंट्री की है ना आई थिंक, जिसमें उन्होंने उसकी वो कवर ड्राइव के बारे में बताया कि
हाँ
आज से 1.5 साल पहले उसकी कैसी थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने कैसे इम्प्रूव किया है, अपना फुट कैसे इम्प्रूव किया है, तो बड़ी एक अच्छा एसेट है पाकिस्तान का।
बिल्कुल सर, अब बात ये होगी है कि ये कमेंट जो है ना इससे मुझे डीन जोन्स की याद आ गई है, डीन जोन्स की जो है ना री इंकारनेशन होगी इरफान पठान के नाम से। ठीक है इरफान पठान भाई कहते हैं कि आसिफ अली को ओपन करना चाहिए, उस्ताद क्या बात है हैं ये भाई। इरफान पठान साहब
यार
डीन जोन्स ये बात कर चुके हैं लेकिन पाकिस्तान ने कभी ट्राई नहीं किया,
सही बात है
क्या कहते हो उमेर? अब तो चांस नहीं है लेकिन वर्ल्ड कप के बाद कर
यार,
सकते हैं।
चांस तो नहीं है इस पे, अगर मैं थोड़ा सा वो क्रिएटिव वाली थोड़ी सी बात करूं तो ये करूंगा कि अगर बाबर आजम और रिजवान 10-11 ओवर खड़े रहते हैं ठीक है, तो उसके बाद आप ना आसिफ को ले आए वन डाउन।
हाँ लेकिन अब आसिफ को जो इस तरह के चांस मिले उस पे उसने विकेट थ्रो ही किया ना, वो आते ही वो उससे बेहतर ऑप्शन आपको शादाब और नवाज में नजर आ रही है मेरा जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आसिफ को अपॉर्चुनिटी मिली है उसने अवेल नहीं की, अगर कर लेता तो फिर बात ठीक थी
यार। अच्छा हाँ सही। अच्छा मैं पता है इस पे क्यों कह रहा हूँ जलाल ये वाली बात, क्योंकि आसिफ की देखिए अगर 10 ओवर हो गए तो आसिफ की उस टाइम वो पोजीशन है कि अगर उसकी विकेट अगर वो अगर वहां पे वो आउट हो जाए तब भी खैर है, और अगर वो छक्के मार ले तो स्कोर आपका थोड़ा और ज्यादा ले जाए,
यार ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन
नहीं रहेगी ना उस
फिर
पोजीशन पे।
फिर बंदा आर्गुमेंट ये करता है कि आसिफ अली टीम में क्यों है, मतलब एक तो बैलेंस ख़राब हो रहा है ऑलराउंडर का कि वहाँ पे कोई ऑलराउंडर नहीं खेल रहा, फिर आसिफ अली 10 में से 1 मैच आपको जिता देंगे। तो देखो शाहिद आफरीदी पे भी क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन शाहिद आफरीदी क्या करते थे कि वो बॉलिंग में एक्सेप्शनल बॉलिंग कर देते थे, अब आसिफ अली सेम नंबर पर आ रहे हैं शाहिद आफरीदी वाले नंबर पर लेकिन बॉलिंग भी नहीं करते, टीम का बैलेंस थोड़ा आउट हुआ हुआ है उनकी वजह से, ये मसला चल रहा है ना। राजेश कुमार साहब कहते हैं पृथ्वी शाह से क्यों मैं खेल रहा है, मुश्ताक अली आई थिंक कह रहे हैं ये, मुश्ताक अली आई डोंट नो कि आपने क्या एग्जैक्ट कहा, लेकिन वो मैंने ये सुना है उन्होंने बड़ी अच्छी एक बारी की है, 40 odd balls पे 100 मारी है मुश्ताक अली टूर्नामेंट में, T20 का कोई उनका चल रहा है, और सचिन तेंदुलकर के बेटे ने भी उमेर आप बता रहे थे बड़ी अच्छी बॉलिंग की है,
अर्जुन बिल्कुल अर्जुन तेंदुलकर ने भी 4 ओवरों में 10 खाया और 2 विकेट ली हैं तो उसको भी काफी क्रेडिट जा रहा है।
बिल्कुल उस्ताद गौरव चौधरी साहब
उसकी बॉल वैसे अच्छी है यार, उसका आपने स्टाइल देखा है बॉलिंग का अर्जुन तेंदुलकर का?
हाँ हाँ देखा है, उसकी बॉल अच्छी है,
बड़ा अच्छा स्टाइल है यार, बड़ी अच्छी बॉल है उसकी,
लेफ्ट आर्मर है वैसे भी वो। गौरव चौधरी कहते हैं जी बहुत बात हो रही है कि इंडिया की बॉलिंग कमजोर है और पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है तो क्या पाकिस्तान को फायदा है? यार इंडिया की बॉलिंग कमज़ोर उस तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पैचेस उनकी इस तरह के जैसा अगर बॉल स्विंग हो रही हो तो पावर प्ले में तो इंडिया बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता है, डेथ में अर्शदीप के अलावा कोई और बॉलर उस तरह रिलायबल नज़र नहीं आ रहा, तो ये इस वजह से थोड़ी कमज़ोर की बात हो रही है। वैसे तो कुल आपका क्या नाम है चाहल अच्छा है, मुझे लगता है चाहल इफेक्टिव होगा बड़े ग्राउंड्स में, वो क्योंकि लूप देते हैं, अगर वो उसी तरह पुरानी तर्ज पे बॉलिंग करेंगे थोड़ी स्लो आउटसाइड ऑफ स्टंप रखेंगे मिक्स करेंगे गुगलीस के साथ तो सही हो जाएगा,
लेकिन डेथ ओवर्स में स्पिनर को लाना यार बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी।
नहीं नहीं मैं डेथ ओवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, डेथ ओवर्स तो कंसर्न है
वैसे कह रहा हूँ,
लेकिन स्पिनर्स अब उनके उस तरह वाला कंसर्न नहीं है कि स्पिनर्स देखो तो ठीक ठाक स्पिनर्स है उनके, ठीक है खासतौर पर अक्षर पटेल को देखो, अक्षर को देखो तो
अक्षर यार तबाही बॉलिंग करेगा, तबाही
सिर्फ डेथ बॉलिंग एक इश्यू नजर आ रहा है, बाकी तो आई थिंक इंडिया का ठीक ही है बॉलिंग। राबी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो कांग्रेचुलेशंस, उमर कांग्रेचुलेशंस यार,
थैंक यू राबी भाई, आपको भी, आपको भी काफी मुबारक हो।
आप ये जुमे की दे रहे हैं या किसकी दे रहे हैं?
यार ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जीत की दे रहे हैं।
अच्छा 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 मैं भूल गया था अच्छा शाहिद असलम
कहीं और ले गए थे कॉन्टेक्स्ट कहीं
और, मैं कहीं और ले गया था। शाहिद असलम क्या चीज है, क्या चीज का कुछ है नवाज, उनके बारे में बात कर रहा था बैटिंग इम्प्रूव। हाँ ये काफी अरसे से टीम के साथ हैं, काफी प्लेयर्स इनकी तारीफ करते हैं, आई थिंक असिस्टेंट रोल अब इनको मिल गया है शायद, तो काफी इनका नाम तो है, काफी अच्छे से टीम है, नजर तो आते रहते हैं ये।
हाँ बिल्कुल, और वो यार ऐसे इनकी बात से याद आया कि डॉक्टर जफर को भी काफी उनकी भी वायरल हुई हुई तस्वीरें सुबह से,
अच्छा
जिसमें फखर जमान खड़ा है, शाहीन खड़ा है।
हाँ 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 वो इंग्लैंड के, इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड वाली तस्वीर,
इंग्लैंड इंग्लैंड वाली बिल्कुल।
तहसीन अंजुम कह रही है कि जी खुशदिल को निकालो, निकालें अब तो फाइनल हो गया भाई,
तो यार अगर हमारे बस में हो ना, हमारे बस में हम तो निकाल दें लेकिन वही बात है कि हमारे हाथ में है नहीं, कुदरत का निजाम है, कुदरत के निजाम के तहत वो खड़े हुए बैठे हुए स्क्वाड में। लेकिन अब मुझे बताएं यार एक बात, खुशदिल को किस तरह खिलाएंगे ये लोग,
मतलब यार नहीं समझ आ रही यार,
रिप्लेसमेंट ऑफ हैदर होगा, हैदर और आसिफ की रिप्लेसमेंट होगा अगर ये दोनों इंजर्ड हो जाते, दोनों में से एक को इंजर्ड हो जाता है वर्ल्ड कप में।
यार ऐसे ही लग रहा है, लेकिन फिर आपके पीछे शान और फखर भी तो बैठे हुए हैं ना, तो समझ नहीं आई कि खुशदिल का क्यों रखा है। आपने पॉइंट अच्छा रेज किया था, वहां पे कुछ ना करते मोहम्मद हारिस को मेन स्क्वाड में डाल देते ताकि आपका रिजवान का बैकअप
बिल्कुल
वाला मसला तो हल होता ना, कुछ समझ नहीं आई खुशदिल को मेन स्क्वाड में रखने, रखना ही था तो रिजर्व में रख देते कोई इशू नहीं था, लेकिन मेन स्क्वाड में रखना सेंस समझ नहीं आई, बिल्कुल कोई सेंस समझ नहीं आई।
बिल्कुल बाकी यार एक और दफा शेलिंग मार देते हैं कि जो जो हमारा चैनल इस टाइम देख रहा है हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन, और जो बेल आइकन है उसको लाजमी दबाए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन एकदम चली जाया करें हमारी वीडियो की।
अच्छा अब मुझे इस कमेंट की समझ नहीं आई वैसे, आई होप कि इसमें कोई
कौन सा कमेंट है,
इरफान पठान का, आसिफ अली को के आई आर एस, आई डोंट नो पता नहीं क्या, जेल
अली को
बनाओ,
क्रिस गेल बनाओ, क्रिस गेल
अच्छा
बनाओ।
क्रिस गेल बनाओ,
आसिफ अली को क्रिस गेल बनाओ,
इरफान पठान भाई आपने कंफ्यूज कर दिया, मैं पता नहीं कहाँ घूमा हुआ,
वो नीचे नहीं नीचे वो हसन भाई ने थोड़ा उनको क्लियर कर दिया, क्रिस गेल ही क्रिस गेल। हाँ यार क्रिस गेल कैसे बनाए वैसे, मुश्किल है बहुत क्रिस गेल बनाना तो मुश्किल।
यार चांस देना चाहिए ऐसे ओपनिंग पे, ये बात तो ठीक है उनको, लेकिन अब जो होगा वर्ल्ड कप के बाद होगा, बाबर से हमने ये नहीं देखा अभी, शुक्र अल्लाह अल्लाह करके हमने नवाज और शदाब को ऊपर भेजना शुरू किया है, हैदर को सही नंबर पे खिलाया, इफ्तिखार को सही नंबर पे खिलाया, तो इसी पे खुश रहें अब और क्या हम बोलें, अल्लाह अल्लाह करके इधर पहुंचे हम। तो
अगर जनाल एशिया कप में पाकिस्तान अगर टॉप ऑर्डर चलता रहता फिर तो इस तरह की चेंजेस नहीं हमें नजर आती।
हाँ ना यार वही बात है, अच्छा ही हुआ है कुछ। अच्छा गौरव चौधरी साहब कह रहे हैं शामी आ गया टीम में, बिल्कुल गौरव साहब आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया, हमने काफी डिटेल में इस पे बात की है, सिराज शामी पे बात की है काफी, आप उसको जरूर देखें।
यार ये राबी साहब एक बात कह रहे हैं इस पे जलाल मुझे बताए, आई थिंक खुशदिल शाह इज बेटर देन आसिफ अली, इट्स ट्रू
यार,
इस पे क्या बोलेंगे आप?
देखो नंबर पे डिपेंड करता है ठीक है, आसिफ अगर आपने हिटर को आखिरी दो तीन ओवरों में भेजना है फिर तो आसिफ अली फार बेटर है खुशदिल से एज अ स्ट्राइकर, ठीक है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ अगर ऊपर वाले नंबर पे बात करते हो तो फिर शायद आप मेक केस कर सकते हो, लेकिन खुशदिल शाह के ऊपर भी कोई परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, डोमेस्टिक में काफी उनकी परफॉर्मेंस है ऊपर वाले नंबर पर, मतलब 15 ओवर से पहले पहले।
हाँ बिल्कुल, ये जो भी मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ उस पर भी चांस मिला था खुशदिल को, ऊपर आया था ये तो उस पर भी कोई परफॉर्म नहीं किया, हालांकि आपको याद होगा पहली वीडियोस में हम इसकी एवरेज बताते थे कि जब ये 15 ओवरों से पहले आता है तो उसके स्ट्राइक रेट भी अच्छी होती है एवरेज भी अच्छी होती है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट उसका इन्फ्लुएंस नजर नहीं आया इंग्लैंड वाले मैच में।
अशफाक अली साहब क्या कहते हैं, उमर साहब जरा पढ़ें कमेंट
जी। अशफाक अली कहते हैं शुरू शुरू में कौन कहता था कि मोहम्मद रिजवान T20 में नंबर वन खिलाड़ी बनेगा, मगर रिजवान ने साबित कर दिया कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता,
सुर्ख नहीं सुराख नहीं आई थी
आसमान में सुर्ख नहीं हो सकता, और एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो।
यार ये कोई शायरी वायरी का कीड़ा मुझे लगता है अशफाक साहब आपके अंदर है कोई, है ये बात, आपने बात तो जेन्युइन की है कि रिजवान साहब जब आए थे एज एन ओपनर तो कोई इनको चांस ही नहीं दे रहा था, सारे ये कहते थे कि छक्का नहीं जो है मार सकता, छक्का नहीं मार सकता, लेकिन शायरी वायरी अपनी कोई आप सुनाए सर, मुझे लगता है आपको शौक है इसका।
आज यार वो की शायरी वाली बात से याद आया, वो ये हैरी संधू एक सिंगर है इंडिया के, उन्होंने हाँ, एक गाना बनाया छोटा सा पाकिस्तान इंडिया के मैच का, जो कि ऑब्वियसली मतलब वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है इंडिया के लिए अच्छा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि शाहीन को छक्का मारा, बड़ा अच्छा सा है वो, सुनिएगा।
मैंने सुना है वो।
अच्छा सुना। अच्छा यार जनाल इस समय मौका मौका नहीं हिट हुआ यार, मौका मौका और पाकिस्तान का नो इशू ले लो टिशू,
मौका मौका का हो गया भाई, बैन हो गया जब से पाकिस्तान ने हराया है।
नहीं वो तो एशिया कप था ना, मौका मौका तो वर्ल्ड कप में आता है,
नहीं वर्ल्ड कप में हराया था ना लास्ट वाले में, उसके बाद से बस होगी ना।
अच्छा सही, उसकी बात करें आप, सही है ठीक है।
अच्छा एक और है मेरा ख्याल है कमेंट में, मैं थोड़ा ऊपर,
एंडी माइक कह रहे हैं, हाँ हाँ मैं पढ़ लेता हूँ, एंडी माइक कह रहे हैं भाई स्काई पर एक डंडे पे बॉल हो तो वीक है, नहीं चल के भाई स्काई पहले एक डंडे पर बॉल हो तो वीक है, आयरलैंड के साथ बोल्ड और LBW हुआ, नसीम ने भी पहले
डंडा उड़ा दिया एशिया कप में,
डंडा उड़ा दिया एशिया कप में, दूसरे और तीसरे एक डंडे की बॉल को घुमाकर ऑन साइड पर छे पेलता है, छे पेलता है।
डू द
अच्छा,
फाइव,
स्काई की तारीफ
डू द
कर।
फाइव। अच्छा मुझे एक मिनट अभी समझ नहीं है, मुझे दोबारा पढ़ना है। तो भाई स्काई पहले डंडे पर बॉल हो तो वीक है, आयरलैंड के साथ बोल्ड और LBW हुआ, नसीम ने भी पहले डंडा उड़ाया एशिया कप में, दूसरे और तीसरे डंडे की। अच्छा ये कह रहे स्काई
किसकी बात कर
शायद
रहे हो?
ऑफ स्टंप पे अगर बॉल रखो डंडे पर या विकेट्स में रखो तो थोड़ा वीक है, जैसा शाहीन नसीम ने उनको बोल्ड भी किया था ना एशिया कप वाले मैच में आई थिंक, तो उसकी वो बात कर रहे हैं थोड़ी वीकनेस की शायद उसकी, उस तरह कर रहे हैं जो मुझे समझ आई है। अच्छा ये अब एक कमेंट आ गया है, फाइंड द लव ऑन द बेस्ट डेटिंग साइट। वाह अच्छा, गौरव
सिद्धार्थ
चित्र
सिंह कह रहे हैं कि 23 को बच के रहे पाक।
कौन
सिद्धार्थ
कह रहा है?
साहब, सिद्धार्थ सिंह कह रहे हैं 23 को बच के रहे पाक। यार ये अब 50-50 है वैसे। सिद्धार्थ भाई आप जरा ज्यादा एग्रेसिव होके कह रहे हैं, हालांकि
अच्छा कल
हमें
तो
लग रहा
आप
है कि
वैसे कह रहे
पाकिस्तान
थे
टफ प्लेयर से।
सेवेंटी सेवेंटी थर्टी उमर है,
कल आप किसकी बात कर रहे
कल
हैं,
जब इंडिया
कि
पाकिस्तान की बात हो
पाकिस्तान
रही थी तो
इंडिया
आप
की?
इंडिया को ज्यादा चांस दे रहे थे, अब आज 50-50 पे आ गए हो हैं,
अच्छा पेट्रियोटिज्म
पेट्रियोटिज्म जाग गई तुम्हारी।
जाग गई है, वाकई जाग गई है, आज
अच्छा
की
गौरव
परफॉर्मेंस के बाद जाग गई है।
साहब क्या कहते हैं, आपको पता है कि नवाज नंबर 3 पर खेलते हैं डोमेस्टिक में और 184 बेस्ट है। यार नवाज प्रॉपर बैटर है सर, नवाज तो एज अ बैट्समैन ही आया था वो, तो उसको हम पाकिस्तानी डोमेस्टिक में बॉलर बना दिया उसको, तो पूरा बैट्समैन है। ये बात तो ठीक है लेकिन अब क्या कह सकते हैं यार, कितनी और चेंजेस करेगा बाबर, बाबर पहले ही बड़ी कम चेंजेस करता है। राबी साहब ने क्लैरिफाई कर दिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ओके 23 को अच्छा बच के रहना, ये तो हो गया। एक और ले लेते हैं जल्दी से, उमेर साहब टाइम काफी हो गया यार, एक मिनट
यार हाँ, काफी टाइम हो गया आपको, हमने वैसे वाइंड अप करना था आज।
चलो ये आखिरी आखिरी कमेंट्स लेते हैं ना। क्रिकेट फीवर साहब कहते हैं आसिफ अली काफ़ी क्लीन हिटिंग करता है एज़ कम्पेयर टू खुशदिल शाह। बिल्कुल सर ये हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है,
ये
एज अ हिटर
तो
वो फिट है। अच्छा भाई कुछ भी हो आपके शो में मज़ा बहुत आता है, थैंक्स ब्रो यार आपका बहुत शुक्रिया, अगर आपको
है।
मज़ा आता
थैंक
है तो बहुत
यू।
अच्छी बात है,
हाँ,
थैंक्स फॉर टॉक बिफोर विकेट। ये बात
ये बड़ी अच्छी बात है, ये वाली बात पे अप्लॉज होना चाहिए। बिलाल साहब अप्लॉज करें।
क्या बात है, ये भी बजा दें। अच्छा
बस यार हसन भाई हमारा, हाँ बजाएं बजाएं, आज खुल के बजाएं, जो बजाना है आप। आज वो है कि ये बड़ा एक बस इशू है हसन भाई हमारा, हमारा जो टाइम का जो आता है ना बैरियर, कि वो एक कांस्टेंट हुआ नहीं जा रहा। तो वो इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं कि एक दफा टाइम हमारा से हो जाए सेट सही वाला, तो फिर और मजा आएगा हमें, आपको भी सबको।
वुडू पाक साहब किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास भी क्रिस गेल और लिविंगस्टन है, बताना नहीं किसी को वरना बड़ी टीम खेलते हुए डरेगी, निकनेम है चाचा और खुशदिल। बस कर दो यार बस कर दो, बहुत ले
अरे
लिए इन बेचारों की। अच्छा
सही बात है, अशफाक अली याद उनकी इतनी खूब नहीं है मीर। यार ये कोई शेर है, याद उनकी इतनी खूब नहीं है मीर, सुने जरा शेर उनका, याद उनकी इतनी खूब नहीं है मीर, फिर लिखे नादा फिर वोदी से बुलाया ना जाएगा, नादा फिर वोदी से। यार अब इसका
शेर
मतलब मुझे
शेर
समझ नहीं
शेर
आया,
की तूने
अगर
जो
आपको आया है तो फिर आप
ना
बोल
शेर
सकते
का तूने कर दिया आज।
हो। नहीं पहला जो स्टेंजा था वो सही बोला,
वो
लेकिन
ठीक
दूसरा
है वो
काफी सही
ठीक
लिखा
है,
हुआ यार।
नदा फिर वो दी, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया सर, इसको जरा और रोमन में अच्छी तरीके से करें, हमारी ये वीक है पढ़ना, थोड़ा स्पेलिंग है ना हमारे समझ नहीं आ रही। नदा फिर वो दी से भुलाया ना जाएगा, कुछ तो हो गया समझ आ गई। लेकिन अच्छा शेर था जो भी था। जावेद सैयद साहब कहते हैं पाक टीम बहुत अच्छी है, नवाज बहुत बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल सर लग तो अभी यही रहा है, रविंद्र जडेजा वाली वाइब्स आ रही हैं, तो अल्लाह करे वो उस लेवल तक चला जाए।
दिल से लिख रहे थे।
देखो भाई हसन हारिस भाई हमारी शिलिंग कर रहे हैं, टॉक बिफोर विकेट को लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन, बेल आइकन नहीं बेल आइकन प्रेस करो एंड ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत मज़ेदार चैनल है अपने भाई का और अपने भाइयों को सपोर्ट करते रहो। क्या बात है भाई, क्या बात
थैंक
है,
यू जी हसन भाई, क्या बात है।
थैंक यू जी। गौरव चौधरी साहब कहते हैं दिल से। अच्छा उमेर साहब, मेरा ख्याल है अब हो गए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमारा जब से हम
नहीं
लगे हुए
यार
हैं।
चलते हैं, आपको पता है मैंने जाना भी था लेकिन
हाँ
बस वो डिस्कशन ऐसी हो रही थी कि मैं जा नहीं सका, तो वाइंड अप करते हैं जलाल, फिर
बिल्कुल जी, वाइंड अप
करते हैं
करते
बाद
हैं अपना।
में।
क्रिकेट फीवर साहब कहते हैं क्रिकेट एनालिसिस से शायरी तक का सफर भाई यही चल रहा है भाई।
क्या हुआ? बस
चले
आप दुआ
हाँ
करें पाकिस्तान पहले ग्रुप में बाहर ना हो जाए, नहीं तो शायरी स्टार्ट कर लेनी हमने इधर।
फिर शायरी पे चैनल हमारा चेंज हो जाएगा। वुडू पाक कह रहे हैं एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई?
प्रॉब्लम सुन लेते हैं फिर उसके बाद जाते हैं।
अशफाक अली साहब कहते हैं दोस्त बनकर मिलने लगे अब हमको मिटाने वाले या मिटाते वाले, समझ नहीं आता कि ये असर मेरी हमदर्दी का था या खौफ था मेरे
खौफ था।
गुजरे ज़माने का। यार ये ख़तरनाक कोई
क्या
शायरी
बात
स्टार्ट
है,
होगी अशफाक
क्या
साहब की
बात
है।
है, क्या बात है, क्या बात है, सही कह रहे।
क्या बात है, दोस्त बनकर मिलने लगे अब हमको मिटाने वाले, समझ नहीं आता कि ये असर मेरी हमदर्दी का था या खौफ था मेरे गुजरे जमाने का। ओए होए 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 होए, पाकिस्तान को पावर प्ले में दिल खोल कर खेलना चाहिए। इरफान पठान कहते हैं बिल्कुल सर, जिस तरह आप आसिफ अली का कह रहे हैं, अब वो बाबर और रिजवान तो बस इतना ही खुल सकते हैं।
यार अभी देखे अगला कमेंट पढ़ा जरा।
यार ये होपलेस सीन लग रहा है भाई। वुडू पाक ये नेट सही नहीं हो रहा यार।
यार वुडू भाई मैं आपको बताता हूँ, मैंने इतनी कोशिश की है, मैंने अपने घर के 3 इंटरनेट बदल दिए हैं, ठीक है। मैं अपने पास 2 डिवाइसेस ले आया हूँ लेकिन शायद लोकेशन ऐसी है कि इस तरह का इशू काफी ज्यादा हो रहा है।
बिल्कुल
लेकिन इस
सर,
पे मैंने वो बात कर रहा हूँ इधर ब्रॉडबैंड वालों से, दुआ करें कोई एक सेपरेट वो दे दे हमें बैंडविथ जिससे कुछ इशू रिजॉल्व हो
डेडिकेटेड
जाए।
बैंडविड्थ ही लेनी पड़ेगी। ऐसे लग रहा है कोई हमने कैरियर नहीं छोड़ा, कोई हमने इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं छोड़ा, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। होपफुली पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और उमैर भाई का इंटरनेट कंसिस्टेंट हो जाए। क्या बात है भाई,
क्या
यार
बात है,
ये बहुत प्यारी बात की आपने
चल
उमैर साहब। अब कुछ करना पड़ेगा ये आपके लिए है जाग
यार
भाई।
ये अब करना पड़ेगा, ये अब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब दुआ करें हो जाए, बस जो उनसे बात हो रही है वो रिजॉल्व हो जाए।
उमैर भाई का
उमैर भाई
इंटरनेट
का
हमारे मिडिल ऑर्डर की तरह है।
इंटरनेट यार मिडल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है थोड़ा वैसे एक मैच में, दुआ करें इसी तरह इंटरनेट भी, वैसे इंटरनेट चला है 2 दिन बीच में। बुडो भाई आप भी थे उस वाली हमारी लाइव
कुदरत
कन्वर्सेशन
का निजाम है भाई, क्रिकेट फीवर भाई कह रहे हैं। यार कुदरत के निजाम पे
में।
चलता है, मुझे भी नहीं पता होता कब निकल जाएंगे। मैं भी अक्सर देख रहा होता हूँ स्क्रीन में, बात कर चुका होता हूँ, बाद में पता लगता है मेहर साहब की सीडी अड़ी हुई है। मैं कहता अच्छा है यार चलो अब मैं ही कुछ कह देता हूँ।
सही बात है। नहीं यार कुछ करते हैं यार, इसका कुछ रिजॉल्व करते हैं।
नहीं इंशाल्लाह कुछ
चले
ना कुछ
जलाल
करते
साहब
हैं।
चलते हैं, काफी टाइम हो गया
बिल्कुल जी, डिस्क्रिप्शन जरूर देखें,
है।
हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जाके एक्सप्लोर करें। हमारी वेबसाइट है www.talkbeforewicket.com। सारे हम पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर हैं, गूगल, एप्पल, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई शायद पाकिस्तान में नहीं आता लेकिन इंडिया में ज़रूर आता है, तो सारा देखें उसको। और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट आता है वो कहीं और नहीं आता। ठीक है सर, ख्याल रखें आप सब अपना, और मुलाकात
चले
होती है
जलाल
फिर।
साहब आप भी ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
खुदा हाफिज़।